శ్రీచైతన్య మనోభిష్టం స్థాపితం యోగభూతం ప్రేమ రూప కదామయం దాతి సుఖదాంతకం జయ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్వేద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరవ భక్తులు. హరే కృష్ణ 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 హరే. సో అభి తక్ హమ్నే అధ్యాయ ఏక్ మే యే సిఖా థా కి అర్జున్ నహీ లడ్నా చాతే. అర్జున్ సోచ రహే హై కి ఇస్ తరహ సే లడ్నే సే మేరా బహుత్ నుక్సాన్ హోగా, ముజే నర్క్ కి యాత్నా భుగట్నీ పడేగీ, ముజే కలంక్ లగేగా కిస్ బాత్ కో లేకర్ కి కి మే స్త్రీయో కి హత్యా కర్ దూంగా, ఐ మీన్ స్త్రీయో కో భ్రష్ట్ కర్ దూంగా, क्योंकि सारे क्षत्रिय समाप्त हो जाएंगे, सारे बुजुर्ग समाप्त हो जाएंगे, तो सोसाइटी जो है, जो समाज है, उसकी पूरी व्यवस्था हिल जाएगी. क्योंकि एक समाज में अगर वरिष्ठ लोग नहीं रहते तो पूरी सामाजिक जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाती है, बैलेंस चला जाता है. और इसके कारण वर्ण संकर प्रजा का जन्म हो सकता है. और इस प्रकार से अनेक अनेक कारण अर्जुन ने दिए थे कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता, मैं ये नहीं करूंगा. तो वो अपनी बुद्धि से सोच रहा है. यहां पर यही समस्या है कि जब हम अपनी बुद्धि से सोचते हैं तब इस प्रकार से रोते हैं. अर्जुन अपनी बुद्धि से सोच रहा है और सुख की व्याख्या खुद बनाया है उसने कि मैं सुखी हो सकता हूं मेरे अभी तक के एक्सपीरियंस के आधार पर. अगर मैं युद्ध नहीं करूंगा तो सुखी हो जाऊंगा. तो ये हम सब की समस्या है कि हम हमारी बुद्धि पे इतना भरोसा करते हैं कि कृष्णा, अगर हम अर्जुन की तरह कृष्ण के शरण में जाते तो नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर हम अर्जुन की तरह कृष्ण के शरण में नहीं जाते तो फिर भगवान बोले ठीक है, तुम्हें इतना इतना समझदार है, इतना होशियार है, कर अपने हिसाब से कर, छोड़ देंगे फिर. तो अर्जुन जितना भी लेक्चर दिया अभी तक का फर्स्ट चैप्टर का, वो सारा सुनने में अगर उसके आर्ग्यूमेंट अगर हम आज समाज में रखे पब्लिक के सामने तो अर्जुन की प्रशंसा होगी. लोग उसको मॉरल कहेंगे, ये बहुत अच्छा नीतिज्ञ है, बड़ा अच्छा समझदार व्यक्ति है, ज्ञानी है. तो मोरालिटी के आधार पर उसको अवार्ड मिलेगा, हाँ देखो कितना समझदार है. इसलिए कहा, एक बार रशिया में रिसेंटली हुआ था ऐसा, किसी ने कहा था कि अर्जुन तो नहीं चाहता था लड़ना, भगवान ने उसको उकेर दिया, भगवान ने उसको उजागर किया, भगवान ने उसको परेशान किया, उसको आक्रमण किया. एक्सट्रीमिस्ट, भगवत गीता वॉज टोल्ड टू बी एक्सट्रीमिस्ट लिटरेचर, कट्टरवादी शास्त्र, ऐसा घोषित किया था. इसलिए भगवत गीता के डिस्ट्रीब्यूशन पे बैन लगा दिया था मॉस्को में. फिर कोर्ट में केस हुआ, केस जीत गए हम. So this is the confusion of materialistic people. तभी अर्जुन कह रहे, अर्जुन की बात सुन रहे थे भगवान. अभी तक अर्जुन ने चार कारण बताए हैं नहीं लड़ने के, है ना, मुख्य रूप से चार चीज बताइए. अभी एक जो है कि लड़ू कि नहीं लड़ू वाला बाकी है, अभी आएगा. तब संजय से शुरुआत होती है. सेकंड चैप्टर में संजय कहते हैं, क्या कहते हैं, पढ़िए.
करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रु पूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देख कर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे।
हाँ, तो हमारे आचार्य बताते हैं कि यहाँ पर मधुसूदन शब्द का अर्थ विशेष है। प्रभुपाद लिखते हैं, द वर्ड मधुसूदन इज सिग्निफिकेंट इन दिस वर्ड्स। Lord Krishna killed the demon Madhu, and now Arjuna wanted Krishna to kill the demon of misunderstanding that had overtaken him in the discharge of his duty. Arjun confused ho gaye the, to wo chahte the ki jaise aapne Madhu naam ke rakshas ko maar diya tha, वैसे मेरे जो शंका है या मेरा जो समस्या है उसको आप खत्म करो। साफ रूप से अर्जुन ने भगवान से निवेदन किया, लेकिन धृतराष्ट्र बड़ा प्रसन्न हो गया। धृतराष्ट्र ने सोचा कि अब तो ये लड़ने वाला नहीं था, लेकिन अर्जुन संजय ने बोल दिया कि ऐसा मत सोचना। और जहां तक कि संजय और धृतराष्ट्र की हमने लास्ट टाइम बात किया था कि संजय ने बाद में बताया, पहले बताया था धृतराष्ट्र को 10 दिन के बाद और 10 दिन, तो मैंने फिर बाद में सर्च किया था गूगल में और शास्त्रों में और सब जगह, तो मुझे ये प्राप्त हुआ कि जनरली ये वैष्णव परंपरा, हमारी परंपरा के आचार्यों ने कभी नहीं कहा ऐसा। ये जनरली मायावादी संप्रदाय के आचार्यों ने ये कहा है, मायावादी संप्रदाय के गुरुओं ने, कि 10 दिन के बाद हुआ था। हमने बलदेव विद्याभूषण, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, भक्ति सिद्धांत और प्रभुपाद, इन सबके टीकाओं को हमने देखा, और इवन हमने महाभारत जो ग्रंथ है वो महाभारत ग्रंथ को भी खोल के देखा, लेकिन कहीं पर भी हमें ऐसा नहीं प्राप्त हुआ कि 10 दिन के बाद बताया था पक्की ज्ञान। तो इसका निष्कर्ष यह आता है कि इट वाज अ लाइव टेलीकास्ट, सामने देख रहे थे। रिकॉर्डेड होता सब।
रूपा जी का जो फर्स्ट चैप्टर ऐसे जो स्टार्ट होता है ना, वो भी मैंने पूरा सुना, तो उनके अंदर भी ऐसा कभी कभी उन्होंने ऐसा जिक्र नहीं किया।
पूरी गीता में, पूरी भगवद गीता में
सुना, उसमें भी कुछ नहीं है ऐसा।
नहीं, आप पूरी भगवद गीता में कहीं पर नहीं, पूरी भगवद गीता में ऐसा कहीं नहीं।
एक तो दिव्यनंदन जी है ना बॉम्बे, दिव्यनंदन जी, दूसरे है श्याम चरण दास जी, ये दो तो मुझे मेरे ध्यान में है। और जयश्री माता जी जो
जनरली क्या होता है ठीक है, लेकिन जनरली क्या होता है कि कहीं ना कहीं किस पुराण में, कहीं किसी पुराण में किसी प्रकार का कथा आता हो। जनरली क्या होता है कि शास्त्र इतना बड़ा विस्तार से बड़ा फील्ड है कि कहीं ना कहीं किसी पुराण में कोई ना कोई कथा ऐसी आती हो जो इसके संबंधित होती है। तो कई बार क्या होता है कि उस पर्टिकुलर पुराण को ज्यादा एम्फोसाइज करके बक लोग उसको बताते हो, लेकिन हमें ये चेक करना चाहिए कि कौन से पुराण को वैष्णव आधार से समझ रहे हैं। तो हमारे परंपरा के आचार्यों ने हमें जो सिखाया हम उसको ही पकड़ के रखेंगे हम, और इससे ज्यादा कुछ फर्क भी नहीं पड़ता कि अगर 10 दिन पहले सुनाया या 10 दिन बाद में सुनाया। फर्क कहाँ पड़ता है कि हम भगवद गीता के कौन से चैप्टर को मानते हैं और कौन से चैप्टर को नहीं मानते, इससे फर्क पड़ता है। लेकिन इसलिए कभी कोई भी आपको भविष्य में ये प्रश्न पूछे कि 10 दिन पहले बताया था 10 दिन बाद में, तो आप उनको उत्तर दे सकते हो कि 700 श्लोक चाहे 10 दिन पहले हो चाहे 10 दिन बाद में हो, 700 श्लोक तो वही रहने वाले हैं और भगवान का जो संदेश है वो भी वही रहने वाला है। तो आपका लाभ संदेश सुनने में और पढ़ने में है, ना कि ये चेक करने में है कि 10 दिन पहले बताया था या 10 दिन बाद में ना। तो आप ये उत्तर दे सकते हो कभी कोई प्रश्न पूछे तो अर्जुन ने ये वैराग्य का मूड जो भाव प्रस्तुत किया, यू कैन कम फॉरवर्ड, लेकिन अब कहा कि भगवान ने कहा, यहां पर श्री भगवान वाच पहली बार आता है। अब दूसरा श्लोक पढ़िए,
पुरुषोत्तम भगवान बोले, हे अर्जुन, आर्य में न छाजे वो विचार તમે આ વસની વેળાએ ક્યાંથી થઈ આવ્યા? એ સ્વર્ગ આપનાર નથી પણ અકીર્તિ આપ કરનાર છે.
તો ભગવાનને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ને કહા, પરમ ભગવાન ને કહા, એસા શ્લોક મેં કહા હૈ. इसलिए श्री प्रभुपाद इस तात्पर्य में भगवान शब्द की व्याख्या करते हैं, जिसमें प्रभुपाद बताते हैं कि पूर्ण पराशर मुनि जो कि व्यासदेव के पिता थे, उन्होंने भगवान शब्द की व्याख्या दी है छह ऐश्वर्यों के माध्यम से, जिनमें छह ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में पूर्ण रूप में पाए जाते हैं वो भगवान है. मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ कि आप सब भक्त छह ऐश्वर्य से परिचित हो, right? You know the six abilities, right? Anybody else? कोई कहना चाहता है छह ऐश्वर्य कौन से बोलो. नहीं नहीं फिर एक एक करके बताओ, सबको बताया तो. हाँ, पूर्ण शक्ति, ठीक. एक यू काउंट हाँ, स्ट्रेंथ शक्ति हो गया.
सर्व
कीर्ति फेम,
नौ
आप काउंट कर रहे हो.
हाँ,
ओके. और बताइए, यश और फेम आर सेम, कीर्ति और यश दोनों सेम. फिर कितना हुआ, तीन हुआ. और बताइए, आई वुड सजेस्ट कि जिनको एक बार बताओ. अच्छा, हाँ, सौंदर्य प्रभु बताए. अच्छा, फोर हुआ. हाँ,
शक्ति सौंदर्य और फेम,
शक्ति सौंदर्य और फेम तीन हुआ. लक्ष्मी धन फोर. फिर वैराग्य बताया,
सिक्स
हो गया. सर्वैश्वर्य पूर्ण. अभी आपको चाहते हो कौन से थे, तो पूर्ण संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण त्याग, संपूर्ण सौंदर्य, संपूर्ण धन, फिर संपूर्ण ऐश्वर्य और संपूर्ण ज्ञान बोल दिया मैंने. ज्ञान, हाँ, शक्ति शक्ति हरे कृष्ण. Oh, you need English words? Yes, now you would like to give English words. Is all fame, all wealth, all beauty, all strength, all what else? All knowledge, all renunciation, what else? Renunciation is the vairagya. Ho gaya? How many? Six. Che ho gaya? Okay.
Kai baar jo bhagwan ke devotees hai unko bhi bhagwan ki ka gaya
hai. Yes.
Narad Muni.
Yes. Bhagwan also means controller. Ishwar or controller, Bhagwan. But that is not the Purna Purushottam.
Yes, not Purna
Purushottam. Small Bhagavan. Yes. Prabhu, your good name, I just want to confirm.
Yeah, my name is Mohan Sheth.
Mohan?
Sheth.
Sheth, okay.
S-H-E-T. Because I am from South. Sheth.
Okay, fine. So, the recently, what you had discussion with Giri Rasa Kapoor and about the registration, right?
Yeah.
Okay, fine. You are okay, comfortable sitting?
Yeah, yeah.
Fine? Okay.
The first day, sorry for late
coming. That's fine. We already completed first chapter and we started second chapter, so I would suggest if you are going to continue, then you would better prefer to get the last chapter's notes from the subscribers, devotees. Yeah, no problem. So, भगवान शब्द का भग भग का अर्थ होता है ऐश्वर्य. ये जो छह ऐश्वर्य की बात आपने जहाँ बताई वो है भग, जो जिसको धारण करने वाले है, दैट इज भगवान. तो भगवान कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो बन सकते हैं. एक बार एक मैं हमेशा ये उदाहरण देता हूँ. एक बार मंदिर में मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था, यू नो, सो एक कुछ 14 साल 15 साल की कोई एक लड़की आई और उसने कहा कि हम आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं. पूछ सकते हैं? मैं कहा पूछो. तो उन्होंने कहा मैं बहुत दिनों से ये जानने का प्रयास कर रही हूँ कि भगवान कैसे बना जाता है. मैं बहुत ट्राई किया, लोगों को पूछा, किसी ने कुछ बताया नहीं, आप बता सकते हो? तो मैंने उनको कहा भगवान को ऐसी पोस्ट या ऐसा कोई स्थान नहीं है जिसको आप अपनी मेहनत से प्राप्त कर सकते हो, या कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप बन सकते हो. अगर हम में से कोई भगवान बन जाता है या बन सकता है, देन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मी एंड गॉड. भगवान में और मुझ में कोई अंतर नहीं रहा फिर. इसलिए कोई तपस्या करके भगवान नहीं बन सकता और किसी तरह से भगवान नहीं बन सकता. क्यों? क्योंकि भगवान अनादि आदि है, सबके आदि है. जब संसार में कुछ नहीं था तब भी वो थे. भगवान कहते हम एवासम एवाग्रे, जब तभी भी मैं था, मध्य में भी मैं हूं, और जब कुछ भी नहीं बचेगा, पूर्ण प्रलय आ जाएगा, ब्रह्मा जी भी नष्ट हो जाएंगे, तभी भी जो बचेगा वो मैं ही हूं. भगवान कहते हैं वॉट एवर इज लेफ्ट एट एंड दैट्स मी. सो भगवान को ऐसी वस्तु नहीं कि जो बन सकता है कोई. इज इटर्नल, शाश्वत. इसलिए यहां पर प्रभुपाद, यू सी, प्रभुपाद इज वेरी स्पेसिफिक इन राइटिंग अबाउट सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड. ऐसा नहीं कहा द गॉड रिप्लाइड. अगर आप दूसरी बुक्स खोल के देखेंगे भगवद्गीता, तो इसमें कृष्ण रिप्लाइड, कृष्ण आंसर्ड, कृष्ण सेड, या फिर गॉड सेड. बट प्रभुपाद इज वेरी स्पेसिफिक, सुप्रीम पर्सनालिटी. पर्सनालिटी मीन्स इज नॉट इम्पर्सनल, निराकार नहीं. सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड. क्या गॉड हेड का अर्थ होता है? देयर मे बी डिफरेंट गॉड्स बट ही इज द सुप्रीम हेड. वो सबसे पूर्ण पुरुषोत्तम. हिंदी में गुजराती में क्या बोलते हैं? पूर्ण पुरुषोत्तम. सभी पुरुषों में उत्तम और सभी चीजों में पूर्ण, यू नो, परमेश्वर. पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर. परमेश्वर का अर्थ है सभी ईश्वरों के ईश्वर. श्री प्रभुपाद इस श्लोक में ब्रह्म परमात्मा भगवान का एक एग्जाम्पल देते हैं सूर्य के भांति. इस भगवान को जिसकी हम बात कर रहे हैं पूर्ण पुरुषोत्तम, उनको तीन पहलुओं में, तीन एस्पेक्ट में, तीन लेवल में समझा जाता है. मैं अभी इसको आपको अभी स्पष्ट कर देना चाहता हूं क्योंकि प्रभुपाद ने भी इसका स्पष्ट कर दिया है इस तात्पर्य में. तो श्रीमद् भागवतम के अनुसार ब्रह्म परमात्मा भगवान क्या है श्लोक? वो इस श्लोक का वदन्ति तस् तत्व विदस् तत्व यज्ञानम अद्वयम लिखा हुआ है. ब्रह्मे थी परमात्मे थी भगवान थी शब्द थे. सो ब्रह्मे थी परमात्मे थी भगवान थी, ये तीन अलग अलग स्टेजेस है. एक ही भगवान जो है उनको तीन अलग अलग श्रेणी में या श्रेणी के लोग समझ सकते हैं. ब्रह्म जो है वो भगवान का प्रकाश है, इफल्जेंस, जो भगवान के शरीर से जो प्रकाश निकलता है इतना तेजस्वी है कि करोड़ों सूर्य एक साथ अगर प्रकट हो जाए तो उसका जो प्रकाश होगा दैट इज इक्वलेंट और मे बी लेस देन ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति का प्रकाश जब श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंध में आता है कि जब भगवान अर्जुन को लेकर गए थे विष्णु के पास वो ब्राह्मण के पुत्र को छुड़वाने के लिए, तो ब्रह्म ज्योति के क्षेत्र में प्रवेश करते ही अर्जुन की आंखें बंद हो गई, अर्जुन देख नहीं सका कुछ भी नहीं, ज्यादा अंधकार में भी कुछ नहीं दिखता और ज्यादा प्रकाश में भी कुछ नहीं दिखता नहीं? लेकिन तभी दिख सकता है जब गुरु कृष्ण की कृपा हो, तो भगवान ने फिर उसको दिव्य चक्षु दिए कि तुम नहीं देख सकते ब्रह्म ज्योति को। लेकिन जो निराकारवादी लोग है, जो मायावादी लोग है, जो शंकराचार्य की जो फिलोसॉफी को फॉलो करने वाले लोग है, वो लोग जनरली ब्रह्म ज्योति को परमेश्वर मानते हैं। वो लोग बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, और अहम ब्रह्मास्मि का तात्पर्य निकालते हैं कि जो निराकार ब्रह्म है वही सब कुछ है। इसकी चर्चा थ्रू आउट भगवद गीता होने वाली है। फिर दूसरा स्टेज होता है परमात्मा, कि जो सबके हृदय में इंडिविजुअल सोल आत्मा के साथ जो परमात्मा का स्वरूप है सबके हृदय में विराजमान है। कई लोग ये कम बुद्धि वाले धार्मिक वक्ता जो मूर्ख प्रजा को इस प्रकार से धोखा देते रहते हैं कि आत्मा सो परमात्मा, आत्मा सो परमात्मा, आत्मा का परमात्मा का मिलन वगैरह वगैरह, लेकिन उनको अगर एक बार भी ढंग से पूछो कि आत्मा किसे कहते हैं और परमात्मा किसे कहते हैं तो उनको कुछ नहीं पता, उनको कुछ भी नहीं पता। वो परमात्मा का अर्थ है भगवान, आत्मा का अर्थ है मैं, और मैं भगवान में मिल जाता हूँ। तो इस प्रकार का वो लोग वर्णन करते हैं। लेकिन परमात्मा और आत्मा दोनों सेपरेट एंटिटी है और साथ अलग अलग ही रहते हैं। परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है और वो क्या करते हैं उनका डेफिनेशन पूरा भगवद गीता के 13वें अध्याय में विस्तार से बताया गया है। तो परमात्मा हम सबके हृदय में, सबके हृदय में सब अणु कणु सब जगह है, सर्वत्र व्याप्त है। और तीसरा जो है जो फॉर्म है वो है भगवान, जो कि श्री कृष्ण, जो स्वरूपवान जो आप यहाँ पर देख रहे हो, मुरली वाले विग्रह में आप देख रहे हो, इस प्रकार के जो भगवान है दैट इज पूर्ण भगवान। प्रभुपद एनालॉजी जो दे रहे हैं वो है सूर्य का उदाहरण। सूर्य को तीन रूप से समझा जा सकता है। एक होता है सूर्य प्रकाश, जो कि ब्रह्म ज्योति के समान माना जा सकता है। कोई अगर कहता है कि सूर्य क्या है तो सूर्य का प्रकाश। दूसरा जो लर्नर है, दूसरी श्रेणी का जो विद्यार्थी है या जो उपासक है, वो सूर्य के ग्लोब जो गोला दिख रहा है उसको मानते हैं। तो जो ग्लोब जो गोले को समझता है सूर्य कहाँ पर है तो वो ज्यादा बेहतर है, जो प्रकाश को सूर्य बोलता है। अगर हमारे घर में सूर्य का प्रकाश आ जाता है तो क्या हम ये कहते हैं कि हमारे घर में सूर्य आ गया? नहीं आया, राइट? तो सूर्य का प्रकाश सूर्य से भिन्न नहीं है, लेकिन सूर्य का प्रकाश सूर्य नहीं है, है ना? जैसे अभी ये बल्ब चालू है, ये बल्ब का प्रकाश नीचे आ रहा है, लेकिन ये प्रकाश बल्ब नहीं है, बल्ब तो ऊपर है, राइट? तो इस तरह से सूर्य का जो गोला है वो सेकंड रियलाइजेशन बोलते हैं साक्षात्कार, वो है परमात्मा का साक्षात्कार। और उससे ऊपर जो श्रेणी है उपासक की वो है भगवान साक्षात्कार, जिसमें उसको पूरी इंफॉर्मेशन है कि सूर्य का एक ग्रह है, उसमें सूर्य राजा सूर्य देव रहते हैं और वहां पर बहुत सारी प्रजा भी रहती है, तब जाके वो ज्ञान पूर्ण होता है। ये उदाहरण प्रपद, और एक उदाहरण प्रपद ऐसा भी बताते थे, या कई हमारे वैष्णव लोग बताते हैं कि जैसे एक गांव में एक पहली बार स्टेशन बनाया था रेलवे का, और किसी को पता नहीं था रेल कैसा कलर संसार کسی نے دیکھا ہی نہیں تھا ریل کیسی ہوتی ہے, تو وہ چلا جاتا. ایک رات کے سمے میں بتایا تھا اناؤنسمنٹ ہوئی تھی کہ رات کے سمے میں پہلی ریل آئے گی, ریل آپ کیا بولتے ہیں ٹرین آئے گی, تو سب لوگ دیکھنے گئے, پورا گاؤں کے لوگ سب اکٹھا ہو کر دیکھنے گئے کہ ٹرین کیسی ہوتی ہے, دیکھنا چاہتے. دور سے انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا جو لائٹ تھا انجن کا, وہ دور سے دیکھا, اتنا خوش ہو گئے, کچھ لوگ ناچنے لگے, واہ واہ ہم نے ٹرین دیکھ لی, دوڑ کر کے گئے گھر پہ, گھر پہ جا کے سب کو بتانے لگے میں نے ٹرین دیکھ لی. بول کے لوگوں نے پوچھا اچھا کیسا ٹرین آئے, آپ لوگ خالی ہو, اتنے پریشان ہو رہے تھے. ٹرین کیا ہوتا ہے, ایک لائٹ ہوتی ہے دور سے آتی ہے بس, دیٹ از ٹرین. تو کچھ لوگ تھے وہ بدھیشالی تھے, وہ بولے کہ ان کو بھاگنا ہے تو بھلے بھاگے, ہم لوگ تو ادھر ہی رہیں گے, ہم تو دیکھیں گے نا, کچھ دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ کیا ہوتا ہے آگے. تو آگے یہ دیکھا تو انجن کو دیکھا, پھر پیچھے بوگیز تھے, ایک انجن کے پیچھے دوسری بوگی تھے, خوش ہو گئے, ناچنے لگے, بھاگ گئے, اور سب کو بتانے لگے ہم نے دیکھ لیا ٹرین, ہم نے دیکھ لیا. تم نے کیا دیکھا؟ انجن دیکھا؟ کچھ نہیں, ہم نے دیکھا انجن دیکھا, اس کے پیچھے ڈبے تھے, سب دیکھا, خوش ہو گئے, وہ تو زیادہ ایڈوانس ہوا. لیکن کچھ اور لوگ تھے تو پھر بھی نہیں گئے, تو ٹرین آئی, ٹرین رکی, ٹرین کے بھیتر گئے, ٹرین میں دیکھا کہ الگ الگ کمپارٹمنٹس ہیں, اس میں پینٹری بھی ہے, اس میں گارڈ کا بھی جگہ ہے, انجن ہے, سب دیکھا. تو وہ ایکچولی بھگوان کو جاننے والے لوگ مانے جائیں گے, اور وہ ٹرین کا جو لائٹ کو دیکھنے والے تھے وہ برہم گنیانی تھے, برہم کو جاننے والے, اور جو بیچ والے جو تھے کیول ٹرین کا انہوں نے اوپر اوپر سے انڈرسٹینڈنگ لیا, وہ ہے پرماتما کو سمجھنے والے لوگ. تو یہ تین شرینی میں جو لوگ ہیں ان کا ڈائریکشن ایک ہی ہے, اسٹیپ ون, اسٹیپ ٹو, اسٹیپ تھری, ڈائریکشن ان کا ایک ہی ہے, لیکن ان کی سمجھ جو ہے, انڈرسٹینڈنگ ہے, وہ گریجولی امپروو ہوتی ہے. ایک برہم کو جاننے والا, دوسرا پرماتما کو جاننے والا, اور تیسرا بھگوان کو جاننے والا. تو برہم کو جاننے والا جو ہے وہ بھی بھگوان سے سمپرک میں ہے, یو نو, وہ سمپرک میں ہے, کنتو وہ کم بدھی والا ہے, وہ کم گنیانی ہے, اس کا گنیان ادھورا ہے. اس سے اوپر والا جو ہے پرماتما کو جاننے والا, اس کا گنیان اس سے اچھا ہے, لیکن بھگوان کو جاننے والا جو ویکتی ہے وہ واستو میں پورن گنیانی ہے. تو یہ چیز, یہ بیسک کنسپٹ ہے, اس کو ہمیں ٹھیک سے سمجھنا چاہیے, برہما, پرماتما اور بھگوان. تو آئی تھنک اٹ از کلیئر فار یو, رائٹ؟ برہما کیا ہے, پرماتما کیا ہے, بھگوان کیا ہے, اس سے کوئی سمبندھت کوئی پرشن ہے کیا؟
یس, ڈیفرنس کیا ہے برہما اور مایاوادی؟
یس, گڈ کوشچن. آپ کا پرشن, ان کا پرشن ہے کہ برہماوادی اور مایاوادی میں کیا انتر ہے. تو اس میں برہماوادی جو ہوتے ہیں وہ بھگوت گیتا کے آدھار سے ایکسپٹیڈ ہے, اپروڈ پیپل, وہ ایک نمن ککشا کے اپاسک ہے جو بھگوان کی نراکار برہم جیوتی کو مانتے ہیں, دے آر ایکسپٹیڈ. لیکن مایاوادی جو ہے ان کو بھگوت گیتا میں ریجیکٹڈ بتایا, ڈسپروڈ, ریجیکٹڈ مایاوادی کو, مایاوادی کو ابودھیا کہا گیا, ابودھیا بدھی نہیں ہے جس میں, ابودھیا بدھی ہین لوگ, وہ لوگ مایاوادی نہیں. مایاوادی اور ناستک میں اگر مایا شبد کا ارتھ ہم جنرلی گجرات میں ہم نے دیکھا, یہ پرچلت ہے کہ مایاوادی ان لوگ کو بھی کہتے ہیں بھک لوگ کی جو بھوتک وادی ہے, کیونکہ وہ مایا سے آکرشت ہے, مایا میں گرے ہوئے ہے, اس لیے جنرلی بھوتک وادی لوگوں کو بھی مایاوادی کہتے ہیں. لیکن یہاں پر پربھوپاد مایاواد شبد کا اپیوگ کرتے ہیں, جب پربھوپاد دونوں کو الگ الگ بتایا, بھوتک وادی ویکتی اور مایاوادی ویکتی. بھوتک وادی ویکتی اندریہ بھوگ میں لگا ہوا ہے, اور مایاوادی ویکتی وہ ہے کہ جو بھگوان میں مایا کا آروپ کرتا ہے, جو بھگوان کو مایا کا پراکٹیہ بتاتے ہیں, جو بھگوان کے سوروپ کو مایا کہتے ہیں. उसको मायावादी कहते हैं। वो पूरा मायावादी थियरी हमें आएगा इसी चैप्टर में, तो वो आपकी जो भगवद गीता की जो मेजर थीम्स है, जो मेजर पॉइंट्स है समझने हैं, उसमें एक है मायावाद को ध्वंस करना। आपको जानकर थोड़ा हैरानी होगी कि प्रभुपाद एक बार बताए थे इस संसार में 99.9% लोग मायावादी है। जो स्पिरिचुअल बात करते हैं ना, धार्मिक बातें करते हैं आपसे, ये आपकी संस्कार आस्था व्हाटएवर इट इज, तो जो जनरली 99% लोग जो बोलते हैं ना, वक्ता लेक्चर जो भी कुछ करते हैं, उसमें मायावाद प्राप्त होता है, उसमें मायावाद देखा जाता है। इसलिए मैं हमेशा भक्तों का कहता रहता हूँ, हमेशा भक्तों को कहता हूँ कि प्रभुपाद के ग्रंथों को छोड़ करके और कुछ मत पढ़ो, प्रभुपाद के लेक्चर्स या प्रभुपाद की शिक्षाओं को छोड़ करके और कुछ न सुनो। We must listen to the instruction given in our life. थोड़ा भी मिलता जुलता है तो भी मत सुनो। आपको लगता है कि नहीं, ये तो हमारे जैसा ही बोल रहा है, तो बोलने दो उनको, आपको सुनने की आवश्यकता है क्या? You no need to listen. Because you may not be expert. आप इतने एक्सपर्ट प्रवीण नहीं हो सकते कि आप इसको तुरंत समझ सकोगे कि यह मायावाद बोल रहा है। अगर मायावादी भाष्य सुन लिया, महाप्रभु बताया कि होएगा सर्वनाश, मायावादी भाष्य सुन लिया तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। क्यों सर्वनाश हो जाएगा? मायावादी कृष्ण अपराधी, मायावादी कृष्ण का अपराधी है, और जो कृष्ण का अपराधी है वो भगवान की भक्ति वाला कैसे कर सकते है? इसलिए मायावाद जो तत्वज्ञान है, शंकर मठ शंकराचार्य उनका जो सिद्धांत है, दैट इज मायावाद, ये मायावाद है, और आज 90% लोग उनको फॉलो करने वाले। तो प्रभुपाद जी ने एक कविता लिखा था भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की स्तुति में, जब उनका व्यास पूजा ऑफरिंग था, तो उन्होंने एक बहुत सुंदर कविता लिखा था, और वो कविता अंग्रेजी में लिखा था प्रभुपाद ने, और वो कविता का एक स्टैंजा ऐसा था, एक लाइन ऐसा था जिसमें प्रभुपाद ने लिखा था कि हे मेरे प्रिय गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, आपने मायावाद को पूरे भारत से बाहर खदेड़ दिया है। तो जितने भी मायावादी जो लोग थे भारत में, उन सब के मुंह पे ताला मार दिया आपने, उन सब को यहां से भगा दिया भारत से। सो जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने ये सुना स्तुति, ये पढ़ा कि अभय चरण ने ये लिखा है, बहुत प्रसन्न हो गए, फिर से पढ़ो, और फिर से पढ़ा वही चीज, बड़ा अच्छा लगा, बोले फिर से पढ़ो, फिर से बढ़ाया, बड़ा अच्छा लगा सुनकर। फिर प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा इसको छाप दो द हारमोनिस्ट के अंदर, जो मैगजीन बनाते थे, जैसे अपना बैक टू गॉड मैगजीन है भगवत दर्शन, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा इसको छाप दो उसके अंदर, बड़ा अच्छा लिखा है उन्होंने। एंड प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत वॉज वेरी हैप्पी, और उन्होंने जब प्रभुपाद को मिले तो ही प्रेज्ड हिम, ही सेड यू राइट वेरी नाइस, आप बड़ा अच्छा, आप अच्छा लिखते हो। सो ये है हमारा संप्रदाय। अगर आपको अधिक इसको समझना है तो आप और एक चीज भी समझ सकते हो इसको, इसके रिलेटेड कि आपके जो परम गुरुदेव जो है प्रभुपाद जी, उनका प्रणाम मंत्र क्या है जानते हो आप? नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारण निर्विशेष। ये निर्विशेष जो है वो मायावाद है, ये निर्विशेष जो है मायावादी। तो निर्विशेष लोगों को प्रभुपाद ने हटाया, भक्ति सिद्धांत ने भारत से हटाया था, और प्रभुपाद पूरे विश्व में कैंची चलाई थी, जितने भी निर्विशेषवादी है सबको काट दिया। નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી. શૂન્યવાદી મીન્સ બૌદ્ધ, શૂન્યવાદી. જન્મ મૃત્યુ કે બાદ સબકુ શૂન્ય હો જાતા, ઉસકો શૂન્યવાદી બોલતા. તો ઇન સબકો પ્રભુપાદ જી ને નશ કિયા થા. તો ઇસલિયે હમારા ક્લિયર અંડરસ્ટેન્ડિંગ હોના ચાહિએ ઇસ વિષય કો લેકર કે માયાવાદી તત્વજ્ઞાન હૈ ક્યા, ઓર હમારા તત્વજ્ઞાન કિસ તરહ સે અલગ હૈ, ઓર માયાવાદી આર્ગ્યુમેન્ટ કો હમ કિસ તરહ સે પરાસ્ત કર સકતે હૈ. ઇતના બેઝિક અંડરસ્ટેન્ડિંગ હમારે પાસ હોના ચાહિએ. તો ભગવદ્ ગીતા કે આધાર સે હમે યે સારી ચીજ કો સમજને કો પ્રાપ્ત હોગા. ઇસ શ્લોક મેં ભગવાન ને અર્જુન કો કહા થા અનાર્ય જુષ્ટમ, અરે કહા એસા ક્યા હો ગયા, અચાનક સે ક્યા હો ગયા અર્જુન તુમે, વોટ હેપન ટુ યુ, હાઉ હેવ ધીઝ ઇમ્પ્યોરિટીઝ કમ અપોન યુ. ફિર કહેતે હૈ અનાર્ય જુષ્ટમ, વોટ ઇઝ ધેટ, અનાર્ય જુષ્ટમ અસ્વર્ગ્યમ. એ તો અનાર્ય જુષ્ટમ હે, અનાર્ય હૈ. આર્ય લોગ એસા નહીં કરતા. આર્ય કા અર્થ વો નહીં કે જો આપ ઇતિહાસ મેં પઢતે થે આર્યન, વો આર્યન નહીં, આર્યન ચીજ હૈ, વો અલગ હૈ. यहां पर जो आर्य शब्द की बात हुई है तो वो आर्य है जो वैदिक संस्कृति को फॉलो करने वाले लोग थे उसको आर्य बोलते थे. जो वर्णाश्रम को फॉलो करने वाले लोग थे उनको आर्य बोला जाता था. और जो वर्णाश्रम के बाहर थे और जो विकर्म या शास्त्र के विपरीत कर्म करते थे उनको अनार्य बोला जाता था. तो ये आर्य के रूप में भगवान ने कहा कि ये अनार्य जुष्टम अस्वर्गम, स्वर्ग में नहीं जाओगे तुम, इसे कोई अच्छी गति प्राप्त नहीं होगी तुम्हारी. अस्वर्ग्यम अनार्य जुष्टम, अस्वर्ग्यम अकीर्ति, अकीर्ति करम, तुम्हारा अपयश होगा अर्जुन. कितने फेमस हो तुम संसार में. आज महाभारत का युद्ध देखने के लिए जो टिकट बेची थी उसमें सबसे बड़ा जो फोटो रखा था वो था अर्जुन का. सारे ब्रह्मांड में स्वर्ग में सब जगह लोग महाभारत का युद्ध देखने आए थे. क्यों आए थे? अर्जुन के कारण आए थे. इन अदर वर्ड्स दिस इज जस्ट यू नो अ फन, बट अगर ध्यान से देखा जाए तो अर्जुन वॉज वर्ल्ड फेमस, नॉट यूनिवर्सली फेमस. स्वर्ग का राजा इंद्र का पुत्र अर्जुन, आप समझ सकते हो कितना फेमस होगा वो. पूरे विश्व में, पूरे यूनिवर्स में देवता लोग भी अर्जुन की प्रशंसा करते थे. गंधर्वों यक्षों उन सबको परास्त कर दिया था उसने. शिव जी को युद्ध में हरा दिया था. आप सोचो कितना चप्पल या कितना प्रसिद्ध था. और भगवान बोलते हैं भाई देख अगर तू ऐसा करेगा ना तो तेरा जो यश है वो सब मिट्टी में मिल जाएगा. सब लोग बोलेंगे हाय हाय अर्जुन का अर्थ, ऐसा बोलेंगे सब लोग. तुम चलेगा ऐसा सब? तो तो भगवान ने यहां पर दो चीज बताई है. एक तो अकीर्ति, प्रेजेंट लाइफ में अकीर्ति होगी, वर्तमान जीवन में अपयश होगा, और भविष्य में स्वर्ग नहीं प्राप्त होगा, नरक प्राप्त होगा. यू नो तो तेरा यू नो ये जन्म भी गया, आगे वाला जन्म भी गया, तेरा पूरा नुकसान ही नुकसान है सब. यू नो लॉस लॉस सिचुएशन है, विन विन सिचुएशन नहीं है. तो फिर भगवान ने कहा आगे तीसरा श्लोक पढ़िए.
हे मृता पुत्र अभिहीन नामर्दय ने ताबे न थईस तने ते सुखी नथी. हे શત્રુઓનું દમન કરનાર હૃદયની આવી શુદ્ર દુર્બળતાનો ત્યાગ કર અને ઉભો થા.
દાઢ દિયા મસ્ત ભગવાન. જેના ભી એક જગ્યા પ્રભુપાદ ને બતાવ્યા હતા લેક્ચર મેં કે વજ્ર આપી કઠોર કુસુમાદ અપી કોમલ. પ્રભુપાદ એક લેક્ચર બતા રહે છે. मीन्स भगवान और भगवान के भक्त कभी वज्र से भी कठोर हो जाते और कभी कमल से भी कोमल हो जाते. भगवान यहाँ पर अपना मित्र है और भक्त है ऐसा सोच करके उसको ऐसे केवल उसका हाँ ठीक है ऐसा नहीं किया। भगवान यहाँ जहाँ पर आवश्यकता थी तो वहां पर डांट भी दिया। सो जनरली हमारा नेचर ऐसा है कि हम जो तुरंत प्रसन्न होने वाली चीज होती है ना, जिससे हमें तुरंत आनंद आता है, उसको हम सबसे पहले एक्सेप्ट करते हैं अभी हमें खुश सुखी होने का। लेकिन बाद में देखा, अर्जुन को आप देखेंगे बाद में कि वो कहता है कि नहीं नहीं कृष्ण यू आर राइट। जब भगवद गीता खत्म हो जाएगी तो फिर अर्जुन कहेंगे नहीं नहीं आप जो बताए वो सही था, मैं तो पता नहीं क्यों क्या हो गया था। और यहाँ पर भगवान ने कहा क्लैब्यम माम, है ना, क्लैब्यम। क्लैब्यम का अर्थ होता है कि क्या है क्लैब्यम, नपुंसकता, है ना। अर्जुन जैसे क्षत्रिय को अगर कोई नपुंसक कह दे तो खत्म, जैसे हमने बताया था ना, वो तो क्षत्रिय का स्पिरिट ऐसा होता है कि उसको अगर उसकी चुनौती दे दे उसके बल को कोई, उसके सामर्थ्य को, तो पूरा प्रलय मचा देता है, है ना। जैसे भीम को बोला तुम हमसे ये कमर यहाँ से नहीं ले जा सकते, लास्ट टाइम मैंने सुना था राइट, तो भीम ने कहा क्या मैं तुम्हारे सामने हाथ फैलाऊंगा, भूल जाओ मैं क्षत्रिय हूँ। क्षत्रिय ऐसे नहीं करता। क्षत्रिय अगर शादी करना चाहते हैं तो प्रस्ताव नहीं रखते, सीधा हरण करते। ये क्षत्रिय कह रही थी, अभी तो क्षत्रिय है ही नहीं, अभी तो कलम शूद्र संभव। ऑफ कोर्स क्षत्रिय जो है वो नीति नियमों का पालन करते हैं, लेकिन वो किसी के सामने झुकते नहीं है। कहने का तात्पर्य है वो झुकते नहीं है किसी के सामने। तो अर्जुन को यहाँ पर भगवान ने क्लैब्यम बोल करके जानबूझकर ऐसे शब्द का उपयोग किया है कि अगर इतने बोलने से काम हो जाता है और धनुष उठा लेता है, युद्ध करने लग जाता है, तो अपना काम रुक जाए ना, अपना प्रॉब्लम समाप्त हो जाए, पूरी भगवद गीता बोलने की आवश्यकता नहीं रहेगी। फिर तकलैब्यम बोल दे, तुम तो नपुंसक की ऐसी बातें कर रहे हो अर्जुन। और क्षत्रिय ऐसा कभी नहीं करता। ब्राह्मण क्षमा करता है, क्षत्रिय क्षमा नहीं करता। क्षत्रिय बहुत स्ट्रिक्ट होता है एडमिनिस्ट्रेशन में, लाइफ फॉर द लाइफ। तुमने इसको मारा, तुमने इसकी जान ली, अब तुम्हारी जान जाएगी। ये नियम है, किसी की जान लेते हो तो आपको अपनी जान देनी पड़ती है। दिस इज द रूल, दिस इज द लॉ। ब्राह्मण बोल सकता है ठीक है तुमने मेरे लोगों को मार दिया, मैं तुम्हें क्षमा कर देता हूँ। क्षत्रिय नहीं कह सकते ऐसा। फीलिंग कोल्ड, इज इट प्रभु, यू फीलिंग कोल्ड?
फीलिंग
कोल्ड,
डोंट
कर दो। अब दिनों को Purpose says, if the son of a kshatriya declines to fight, he is kshatriya in the name only. So, agar kshatriya yudh karne se mana kar de, to keval naam ka kshatriya reh jata hai. Kshatriya bandhu bolte to. Ek brahma bandhu hota hai, aur dusra hota hai kshatriya bandhu. To, Bhagwan ne ek bhi, aap socho, itne saare argument ke baad reply seedha Bhagwan ka aaya, ऐसा कैसे हो गया पागलपन तुम्हारा, अचानक से क्या हो गया? ऐसा नहीं कि नहीं अर्जुन तुम्हारी बात तो सही है, सोचते हैं क्या किया जाए, ये युद्ध करे कि नहीं करे, थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं, फॉर्म डिसीजन, व्हाट इज दिस, क्या कर रहे हो, ये पागल हो गया? युद्ध नहीं करोगे तो क्या भीख मांगोगे, क्या करोगे, जाओ युद्ध करो। गिव सच पैटी वीकनेस of the heart and arise, parantap, shatruon ko khatm kar sakte ho, tumhari sakti hai, you know, chastiser, tum kshatriya ho, mat bhulo ye, you know, tumhara jaisa prutha ka putra, itna famous person, indra ka beta, aur yudh nahi karega, ये गलत हो जाएगा, डोंट डू दैट। अब देखो अर्जुन क्या कहते हैं।
अर्जुन ने कहा, हे सत्वंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलट कर बाण चलाऊंगा।
कैसे मारूं? बोल दिया कि क्या हो गया जो मेरा अनार्य का काम है, ऐसा सब नहीं करते अर्जुन, युद्ध करो। अब कैसे मारूं इनको, अब बताओ। आपके लिए तो बोलना आसान है, मतलब फिर से मधुसूदन बोल दिया भगवान को, आप शत्रु को मारते हो, आप मधु नाम के राक्षस को मारा था, अभी मधुसूदन हो तो ठीक है, लेकिन भीष्मसूदन बनना किसी को अच्छा लगेगा? द्रोणसूदन बनना किसी को अच्छा लगेगा? आप अपने आप मधुसूदन बन गए और मुझे बोलते तू भीष्मसूदन बन जा, तू द्रोणसूदन बन जा, नहीं मार सकता ऐसे। प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि भीष्म पितामह थे, दादा थे, और द्रोण जो थे वो गुरु थे, जो हमसे उम्र में बड़े होते हैं, जो हमसे वरिष्ठ होते हैं, उनके साथ वर्बल आर्गुमेंट भी नहीं होती, शाब्दिक युद्ध भी नहीं होता, उनके साथ आर्गुमेंट करना वो एक क्या बोलते हैं उसको, बैड एटिक्वेट, एक अच्छा दुर्गुण, इसको दुर्गुण बोलते हैं। अगर आप बड़ों के साथ बात करने में तमीज नहीं रखते, बड़ों के साथ बात करने में आप विनम्र नहीं रहते और उनसे आर्गुमेंट करते हो, तो ये गलत माना जाता है, अनकल्चर्ड, मूर्ख माना जाता है उस व्यक्ति को। प्रभु भगवान कहते हैं, प्रभुपाद ने इस पॉइंट को एम्फेसाइज किया है तात्पर्य के अंदर, तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि अर्जुन कहते हैं कि मैं उनके चरणों में तो पुष्प अर्पण करूंगा, तो आप मुझे बाण छोड़ने की बात करते हो, यहाँ तो वर्बल फाइट की बात ही नहीं हो रही, आर्गुमेंट की बात नहीं हो रही, यहाँ तो सीधा उठा हथियार उठाओ, इसको खत्म करो, हत्या की बात हो रही है। व्हाट इज दिस, आई मीन डू यू प्रिफर लाइक दिस कृष्णा, दे नॉट प्रॉपर। अभी वापिस वो नीति बता रहा है, हमसे बड़े हैं, लेकिन ठीक है प्रभुपाद बताया कि दैट इज प्रॉपर, बट अर्जुन जो बता रहा है वो अज्ञानता के वश बता रहा है, वो शरीर और आत्मा का अंतर नहीं समझता। अभी आगे के श्लोक में अर्जुन कहते हैं, देखो अभी क्या कहते हैं, क्षत्रिय स्पिरिट भी छोड़ दिया उसने, पढ़ो पांचवा श्लोक।
તેઓ ભલે દુનિયા લાભની ઈચ્છા રાખતા હોય તો પણ તેઓ ગુરુજનો છે, જો તેમનો વધ થશે તો અમારી ભોગવ્યા યોગ્ય દરેક વસ્તુ રક્ત રંજિત હશે,
મુંજે ભોગ આંબદરે પ્રતિજ્ઞા। अर्जुन सोच रहे हैं, देखो अभी क्या उसका विचार, तो देखो भीख मांगने को तैयार हो गया कि मैं भीख मांग के रह लूंगा, नहीं मांग सकता अर्जुन, भीख मांग ही नहीं सकता, यहाँ से भागेगा तो किसी और जगह लड़ पड़ेगा किसी के साथ, वो क्षत्रिय है, उसका नेचर है, वो युद्ध करेगा, लेकिन वो बोलता है कि नहीं नहीं तो मैं किसी मंदिर के बाहर बैठ जाऊंगा लोटा लेकर के, डालो इसमें भीख मांगूंगा, आम मधुकरी करूंगा, द्वार द्वार पे जाऊंगा, वही कुछ खाने को दो। लेकिन हो सकता है कि ये लाइफ मेरी ट्रबलसम होगी वर्तमान में, तो मैं, ये अर्जुन की सोच है कि वर्तमान में मुझे मुश्किल हो जाएगा कि भीख मांग कर रहा। एक रूप से देखा जाए तो अर्जुन ये दिखा रहा है कि उसको राज्य की कामना नहीं है, ये दिखा रहा है। एक रूप से देखा जाए तो एक अच्छा क्वालिटी है कि वो रिनाउंस है, उसके वैराग्य, उसके हृदय में कोई आकर्षण नहीं है ऐसा कि राज्य का सुख भोगेंगे वगैरह वगैरह, ऐसा कोई आकर्षण नहीं है। भीख मांगने को भी दे रहा है, लेकिन भीख मांगना क्षत्रिय के लिए वर्जित है, क्षत्रिय भीख नहीं मांग सकता। तो लेकिन अर्जुन सोच रहा है कि बाद में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना, ये लाइफ में प्रॉब्लम रहेगी लेकिन आगे वाली लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगा, इनको मारने से जो पाप लगेगा वो पाप का परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा ना, अगर मैं इन लोग को मार देता हूं तो क्या होगा, हमारा जितना भी राज भोग ऐश्वर्य है वो सब इनसे रक्त रंजित हो जाएगा, भाई इन लोगों को मार करके तुमने राज्य बनाया, इन लोगों के लहू से तुम्हारा राज्य बना है। तो ये राज्य तो हमारे किसी का भोग करने के योग्य नहीं रहेगा, और भविष्य में क्या होगा, मारने का पाप लगेगा। तो तुम ये मत सोचो कृष्णा कि मैं बड़ा कमजोर हूं इसलिए ना बोल देता हूं, मैं तो स्ट्रांग हूं, लेकिन मैं सोच रहा हूं ऐसे कैसे करूं। सो नेक्स्ट वाले श्लोक में कंटिन्यू करते अर्जुन इसी चीज को लेकर के, पढ़िए।
आप यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता ही नहीं है, फिर भी वे युद्धभूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं।
ये हुआ अर्जुन का अंतिम रीजन युद्ध नहीं करने का। मुझे ये नहीं पता कि युद्ध करना या नहीं करना कौन सा श्रेयकर है, ये नहीं पता मुझे। करने से कंफ्यूज है, करने से लाभ है, नहीं करने से लाभ है, इसमें ज्यादा नुकसान है, इसमें कम नुकसान है, वो अपने कैलकुलेशन लगा रहे हैं, अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं। तो एक जगह प्रभुपाद ने कहा था कि जब आपको बहुत ज्यादा चिंता होती है कि क्या करे क्या नहीं करे, करूं ना करूं, करूं ना करूं, तो बेस्ट ऑप्शन ही नहीं करो। प्रभुपाद जी का मत है, आपके मन में बहुत प्रश्न आ रहा है क्या करूं, करूं ना करूं, करूं ना करूं, तो सबसे कॉमन आंसर होता है कि मत करो, डोंट डू इट। भूख लगी है थोड़ा है, ज्यादा भूख नहीं लगी, कम भूख लगी, खाऊं नहीं खाऊं, खाऊं नहीं खाऊं, डोंट ईट, मत खाओ। लेकिन वो ज्यादा अच्छा है, नहीं करना वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आपको नेचर कॉल होता है, समझ लो कि आपको शौच क्रिया या कोई भी नेचर कॉल आता है तो उसमें अगर आपके मन में होता है ऐसा, जाऊं कि नहीं जाऊं, बाथरूम जाऊं कि नहीं जाऊं, नहीं जाऊं कि नहीं जाऊं, अगर आपके मन में ऐसा होता है तो सबसे उत्तम ऑप्शन है चले जाओ। उसमें यस नो नहीं करने का, थोड़ा यस थोड़ा नो है तो यस कर देने का। और भोजन और कोई कार्य के लिए यस नो होता है तो नो कर देने का। लेकिन ये तो ऐसा कोई छोटा मोटा काम था नहीं, यहाँ तो मरने वाली बात हो रही थी, या तो मरो या तो मारो, ऐसी बात हो रही थी। तो इसमें यस्नो का यस या नो करना बहुत मुश्किल था, तो इसमें तो किसी गुरु की आवश्यकता थी कि पूछना पड़ेगा भाई क्या करे। तो अर्जुन में ये सब प्रकार के भगवद गीता को समझने के लिए जितनी क्वालिटी रिक्वायरमेंट होती है कि कंफ्यूजन या फिर बहिरा, उसका माइंड भी डिटैच था, इंद्रियां वश में थी उसकी, वो श्रद्धालु था भगवान के प्रति और सहनशील भी था, उसको किसी भी प्रकार की स्थिति का सामना करने के लिए तैयार था, और सबसे उत्तम बात थी कि वो ओपिनियन मांगा भगवान का। ऐसा नहीं कि जनरली कई बार क्या होता है कि शिष्य जाते गुरु के पास, प्रश्न भी खुद करते हैं, उनका आंसर भी खुद ही बता दे, तो फिर भाई तुम गए क्यों स्टैंप लगाने के लिए, मेरे गुरुजी ने कहा है, अप्रूवल करवाने के लिए, सिग्नेचर करवाने के लिए गुरुजी ने बोला है। तो जो तुम चाहते हो अगर वही करना चाहते हो तो फिर गुरु उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, तुम जिम्मेदार हो उसके लिए। आगे जाके सफल हुए तो भी तुम और विफल हुए तो भी तुम। तो अर्जुन का जो तरीका है गुरु के पास जाने का, वो सबसे अच्छा तरीका है, दैट इज द परफेक्ट वे। उसी तरीके को हम सब भक्तों को समझना चाहिए। एक्चुअली अर्जुन आगे वाले श्लोक में देखो क्या कहता है, बहुत सुंदर श्लोक है आगे वाला श्लोक, पढ़िए।
दुर्बलता के कारण कर्तव्य भूल गया हूँ और मेरा सारा धैर्य खो चुका हूँ। इसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए तेजस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और अवकाश न रखू, कृपया मुझे उपदेश दें।
कार्पण्य दोष हो प्रत स्वभाव, कार्पण्य दोष से मेरा जो स्वभाव है, मेरा जो वास्तविक जो असली स्वभाव है वो नष्ट हो गया है। पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ चेता, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं धर्म सम्मूढ, मेरे लिए क्या करना है क्या नहीं करना, मूड हो गया मैं, ब्लैंक हो गया, पूरा ब्लैंक, 100% ब्लैंक। अब करूं क्या, किं कर्तव्य मूढ़। धर्म सम्मूढ चेता यह श्रेय श्याम, मेरे लिए श्रेय किसमें है। यहाँ पर श्रेय प्रभुपाद एक जगह और एक जगह बताया, श्रेय और प्रिय, श्रेय का अर्थ होता है लॉन्ग टर्म फायदा किसमें होता है और शॉर्ट टर्म फायदा जो प्रिय, लेकिन अर्जुन यहाँ पर श्रेय पूछ रहे हैं कि किसमें मेरा कल्याण होगा आगे जाके, क्या मेरे लिए उचित है। यह श्रेय श्याम निश्चितम ब्रूहितन में, उसको कन्फर्म करके बताओ निश्चित रूप से, और परहेप्स में भी वाला काम नहीं चलेगा, शायद ये करने से तुम्हारा ठीक हो जाएगा, ट्राई ट्राई करो, अगर नहीं होता तो फिर और कुछ सोचेंगे, ऐसा नहीं, परफेक्ट बताओ, निश्चितम ब्रूही बताओ, बताइए तन में, आप कृपा करके मुझे बताइए। शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य बन जाता हूँ। शादी माम, मुझे सुधार कीजिए, मेरा मुझे मार्गदर्शन कीजिए। त्वाम प्रपन्नम, आपके शरणागत हो गया, मैं आपका शरणागत हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे करेक्ट कीजिए, मुझे गाइड कीजिए, मैं भूल गया हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए मुझे क्या नहीं करना चाहिए। ये है तरीका गुरु के पास जाने का। गुरु से जब भी आप कुछ भी चर्चा करने जाओ, परमिशन लेने जाओ या कुछ भी अपने विषय में पूछने जाओ, तो कभी भी कंक्लूजन आप मत दो, कंक्लूजन उनको देने दो कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐसा पूछो और तैयार रहो। अगर वो कहे करना चाहिए तो उसको करना है, अगर वो बोले नहीं करना चाहिए तो उसको नहीं करना है। जैसे अर्जुन ने, भगवान ने बोल दिया अर्जुन को कि तुम युद्ध करो, तो अर्जुन ने ऐसा नहीं कहा भाई तुम्हें करना है तो करो मैं तो चला ही, ऐसा नहीं, नॉट दैट। जब गुरु बोलते हैं कि तुम ये मत करो, नहीं लेकिन मेरी तो बड़ी इच्छा है, तुम्हारी इच्छा कोई, तुम्हारी इच्छा का कोई वैल्यू नहीं है। क्यों वैल्यू नहीं है, क्योंकि हम मूर्ख है, हमें जानते नहीं कि हमें क्या करना चाहिए। शिष्य से हम शादी महाभ्राम, गुरु के सामने मूर्ख होना ये सबसे उत्तम तरीका है शरणागति का। यू मस्ट बी फूल अगेंस्ट स्पिरिचुअल मास्टर। सो गुरु मोरे मूर्ख देखी करिला शासन, चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान है, isn't it? चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, वो कहते हैं कि मैं मूर्ख गुरु के सामने, मैं मूर्ख हूं, और हम गुरु के सामने तो छोड़ो ऐसे भी नहीं सोचते कि हम मूर्ख हैं। गुरु के सामने भी हम होशियार बनने का प्रयास करते हैं। आई नो गुरु महाराज, आई नो, मैं जानता हूँ, अब तो सब जानते हो तो फिर मेरे पास क्यों आते हो, जाओ, ये भी मुझे पता है गुरु, हाँ वो भी मुझे पता है, ये भी पता है, तुम्हें कुछ नहीं पता है, तुम शून्य हो, मूर्ख हो। चैतन्य महाप्रभु भगवान होकर के कह रहे हैं कि मैं मूर्ख हूं, और भगवान होकर कह रहे, क्या भगवान मूर्ख हो सकते है? नहीं, और कोई भगवान का गुरु बन सकता है क्या, नहीं बन सकता है। फिर भी बोलते हैं कि गुरु मोरे मूर्ख देखी कैलाश, गुरु ने देखा कि मैं मूर्ख नंबर एक हूँ, कहा बेटा तू मूर्ख नंबर एक है, वो ही बुद्धि बुद्धि कुछ नहीं है, ये शास्त्र वास्त्र तेरे कुछ काम दिमाग में घुसेगा ही नहीं, तो हरिनाम जप कर। ऐसा चैतन्य महाप्रभु को उनके गुरु ने कहा था। जस्ट इमेजिन, तो इसका अर्थ होता है कि गुरु के सामने कितना भी विद्वान शिष्य हो वो मूर्ख ही रहता है, इसलिए अपने आप को मूर्ख कहने में कोई ऐतराज नहीं है। अपने आप को गुरु के सामने मूर्ख बताने से आपका मान कम नहीं होता है, आपका मान बढ़ता है। क्यों? क्योंकि आप अपनी वास्तविकता पहचान चुके कि आप मूर्ख हो। ये वास्तविकता है हमारी। हम चाहे कितना भी सोचे कि मैं बुद्धिशाली हूं, लेकिन यह मूर्ख नंबर एक। मूर्ख तुम्हें वेदांत, तुम्हारा नहीं वेदांत अधिकार, बोल दिया गुरु जी ने। मूर्ख तुम्हें वेदांत, तुम्हारा नहीं वेदांत अधिकार, तुम मूर्ख है। भगवान चैतन्य महाप्रभु को बोला, वेदांत वेदांत दिमाग में नहीं आएगा, तू नहीं समझ सकता। तो इसलिए अर्जुन अगर शरणागत हो सकते हैं गुरु को, तो हम क्यों अपने गुरु को पूर्ण रूप से शरणागत नहीं हो सकते। हमें सुनना है गुरु की बात को और उसका पालन करना है। अर्जुन का प्रॉब्लम क्या था कि वो नहीं लड़ना चाहता था, और हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम गुरु के आदेश का पालन करना नहीं चाहते। तो हम क्या करना चाहते हैं? हम वही करना चाहते हैं जो हमारा मन कहता है, हम वही करना चाहते हैं जो हमारी दृष्टि से ठीक है। तो इससे सफलता नहीं मिल सकती, इससे हम असफल हो जाएंगे। लेकिन जो अर्जुन की तरह शरणागत होता है, तो वो व्यक्ति सफल हो सकता है। तो यहाँ पर अर्जुन ने बड़ा सुंदर प्रश्न कहा, ये आई वुड सजेस्ट इफ समबडी कैन रीड बाय नेचर्स ओन वे, वेरी ब्यूटीफुल पैराग्राफ। आप पढ़ रहे थे ना, आप पढ़िए। बाय नेचर्स ओन वे कौन सा पैराग्राफ है प्रभु, कैन यू सजेस्ट इम? लास्ट वन,
फर्स्ट
वन,
फर्स्ट
पैराग्राफ। नहीं नहीं, सेम स्ट्रोक का
2.7.7 સમગ્ર પદ્ધતિ દરેક વ્યક્તિ માટે વિષામણનું કારણ હોય છે, ડગલે ને પગલે મૂંઝવણ હોય છે, તેથી મનુષ્ય પ્રમાણભૂત આધ્યાત્મિક ગુરુનો આશ્રય લેવો જોઈએ, જે તેને જીવનનો ઉદ્દેશ સિદ્ધ કરવાનું સમુચિત માર્ગદર્શન આપી શકે। સમસ્ત વૈદિક ગ્રંથો એવો ઉપદેશ આપે છે કે આપણી ઈચ્છા ના હોવા છતાં આવી પડતી જીવનની મૂંઝવણોમાંથી છૂટવા માટે અધિકૃત આધ્યાત્મિક ગુરુ પાસે જવું જોઈએ। આ મૂંઝવણો વંદના દાવાગની સમી છે, જે કોઈના સળગાવ્યા વિના ગમે તે રીતે સળગી ઉઠે છે। એ જ રીતે જગતની સ્થિતિ એવી છે કે વણ જોઈતી જીવનની મૂંઝવણો આપોઆપ ઉત્પન્ન થઈ જાય છે। કોઈ ઇચ્છતું નથી કે આગ લાગે, છતાં તે લાગે છે અને આપણે વ્યાકુળ થઈ જઈએ છીએ। વૈદિક જ્ઞાન તેની અનુરૂધ કરે છે કે જીવનની મૂંઝવણો ઉકેલ લાવવા તથા તેના ઉકેલનું વિજ્ઞાન જાણવા માટે મનુષ્ય ગુરુ શિષ્ય પરંપરાના સદગુરુના શરણે જવું જોઈએ। જે મનુષ્ય સનિષ્ઠ સદગુરુના શરણમાં હોય છે, તે બધું જ જ્ઞાન થયેલું છે એમ માનવામાં આવે છે। માટે મનુષ્ય ભૌતિક મૂંઝવણોમાં રહ્યા વિના સદગુરુના શરણે જવું જોઈએ। આ શ્લોકમાં આ ભાવાર્થ છે।
યસ, તો પ્રભુપાદજી તાત્પર્યમાં બહુ સ્પષ્ટ રૂપે બતા રહે છે કે સંસાર કા જો અગ્નિ હૈ વો કોઈ જલાતા નહીં હૈ, अपने आप जलता है। एक बार प्रभुपाद एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहे थे और वहां पर बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, आई मीन इट वॉज गुरुकुल, तो उसमें लेक्चर दे रहे थे। तो उसमें छोटे छोटे बच्चे थे, तो किसी वक्त कोई बच्चा कृष्ण बुक पढ़ रहा होगा, तो कृष्ण बुक में एक चैप्टर होता है कि दावाग्नि का पान, जो दावानल है वो भगवान पान कर लिए, दावानल पान। तो उसने हाथ उठाया, कहा कि प्रभुपाद एक प्रश्न है। वो बच्चा था, तो प्रभुपाद ने कहा पूछो। तो उसने बच्चे ने प्रश्न किया, ये दावानल कैसे लगा था, ये फॉरेस्ट फायर था वो कैसे लगा था। तो फिर प्रभुपाद ने उसके बाद एक छोटा सा लेक्चर दे दिया। प्रभुपाद ने कहा कि वो लगता नहीं, अपने आप लगता है, वो कोई लगाता नहीं उसके। Then he said, what is संसार दावानल? संसार दावानल की तरह क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर हर कदम पर एक समस्या होती है, कोई समस्या से मुक्त नहीं है। वो कहता, कोई सोचता है कि मैं अगर इस चीज को ग्रहण करता हूँ तो मैं सुखी हो जाऊंगा, या उस चीज को ग्रहण करता हूँ तो मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। कोई सोचता है कि मैं यू नो ब्रह्मचारी बनूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, कोई बोलता ना ऐसा बनूंगा लकड़ का लड्डू खाए वो भी पछता है, ना खाए वो भी पछता है, तो नहीं खा के पछताना ज्यादा अच्छा है, कम से कम खाया तो नहीं। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि आप किसी भी अवस्था में जाओ, चाहे आप कोई आश्रम पकड़ लो, कुछ लोग कहते मैं इस शहर में नहीं रह सकता, मैं यहाँ पर मुझे अच्छा नहीं लगता, दूसरे शहर में चला जाऊं। अब दूसरे शहर में जाओ, आपको क्या लगेगा, आपको वहां पर कोई स्वागत करेगा, अफसर आकर आपका जो स्वर्ग के इंद्र आएंगे आपको हेल्प करने के लिए, कुछ नहीं होने वाला, सही रहेगा आपका सिचुएशन सेम, कोई नहीं नहीं प्रभु वहां पर ज्यादा फायदा है। ये केवल हमारा मन का भ्रम है, ट्रिक है, ये संसार में केवल कष्ट ही कष्ट है, चाहे आप किसी भी आप ब्रह्म भुवन आलो का पृथ्वी में रहो या स्वर्ग लोक में जाओ नरक लोक में जाओ कहीं पर भी जाओ कष्ट ही कष्ट मिलेगा आपको, है ना। आप अफ्रीका जाते हो, आप चाइना जाते हो, अमेरिका जाते हो, इंडिया जाते हो, कहीं पर भी जाते हो कोई फर्क नहीं होता, सेम सारी समस्याएं सेम होती है, आहार निंद्रा ये क्या जन्म मृत्यु जरा व्याधि आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि देवी की सब होती है उधर, कोई चेंज नहीं है, सेम एवरीथिंग इज सेम। तो इसलिए इस संसार को दावानल कहा जाता है क्योंकि यहां पर हर कदम पर प्रॉब्लम है। अगर आप समझो कि सॉल्ट माइन देखा है कभी, सॉल्ट माइन मीठे का क्या बोलते हैं आप इसको, हाँ अगर अगर है ना नमक का अगर सॉल्ट माइन, तो सॉल्ट माइन में अगर आप लेफ्ट जाकर के चखते हो कि वो मीठे का नमक का स्वाद कैसा है तो कैसा होता है, नमकीन होता है, है ना। और राइट में जाकर, उत्तर में जाकर, दक्षिण में जाकर, कहीं पर भी जाकर चेक करते हो उसका स्वाद कैसा रहेगा, सेम ही रहेगा ना। तो ये संसार के आप किसी भी कोने में जाओ आपको सेम प्रॉब्लम रहेगी, संसार दावा नाला। हमारे दिन की शुरुआत होती है इस शब्द के साथ, ये संसार दावा नल है, हमारा दिन शुरू होता है इस तरह से, ये संसार दावा नल है। और आध्यात्मिक गुरु जो है वो हमें प्राप्तस्य कल्याण गुणा नमस्ते वंदे गुरु शिष्य, आध्यात्मिक गुरु हमें शीतलता प्रदान करते हैं और हमारा रक्षण करते हैं इस दावा नल में से, अन्यथा हमारी इच्छाएं हमारे क्लेश इतने अधिक है कि हम दिन रात जलते रहते हैं, इससे चिंता एंग्जाइटी शोक धोखा डिसअपॉइंटमेंट फ्रस्ट्रेशन ये सब इसके बीच में हमारा जीवन जीता है, हम जीते और फिर भी प्रयास करते रहते हैं कि एक दिन मैं सुखी हो जाऊंगा, एक दिन जो कभी नहीं हो सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल। इसलिए अर्जुन ने यहां पर कह दिया कि मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूं, मैं आपके शरणागत हो जाता हूं, तो बल्लभ विद्याभूषण ऐसा अनुमान लगाता है कि भगवान ने ऐसा कहा होगा, फिर जस्ट इसेज कि अर्जुन तुम तो सब शास्त्र वगैरह सब जानते हो, अपना बुद्धि का उपयोग करो, खुद सोचो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मेरे पास क्यों आयो शरणागत, मैं तुम्हारा शरणागत हूं मेरा तो। देखो अर्जुन एक चीज समझ लो, मैं तुम्हारे गुरु बनने के मूड में नहीं हूं, मैं तुम्हारा मित्र हूँ और मित्र ही रहना चाहता हूँ, और तुम्हारा तो कनेक्शन सब जगह है, व्यासदेव को भी जानते हो, सबको जानते हो, व्यासदेव के पास जाके उनके पास जाकर के पूछो ना ये प्रश्न, उनको गुरु बनाओ, शिष्यस्ते हम ताजी हम उनको बोलो। ऐसा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, वाई यू वॉन्ट टू बिकम माई डिसाइपल, गो टू व्यासदेव और गो टू सम अदर पर्सन, वाई यू आर कमिंग टू मी। एक्चुअली भगवान जनरली सातवें श्लोक में अर्जुन ने कह दिया कि मैं आपका शिष्य हूं मुझे उपदेश दीजिए, राइट। तो अभी नेक्स्ट श्लोक में ऐसा आइडियली होना चाहिए कि श्री भगवान वाच होना चाहिए, है ना, आइडियली ऐसा होना चाहिए श्री भगवान वाच, लेकिन नहीं है, नहीं है श्री भगवान वाच, भगवान कोई आता है आपके पास आकर कहता है कि मैं आपका शिष्य हूं मुझे मार्गदर्शन दीजिए, तो ठीक है चल बेटा मैं तुझे सिखाता हूँ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, राइट। लेकिन यहां पर नहीं ऐसा, तो भगवान एक्चुअली जानबूझकर आगे वाले श्लोक में नहीं बोले, जानबूझकर पढ़िए आगे वाला श्लोक क्या है,
मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को
दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर इस कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा।
हाँ नहीं बोला अर्जुन का, अर्जुन बोलता रह गया, दूसरा शोक भी बोल दिया, भगवान ने कुछ नहीं कहा। एक्चुअली ये तरीका होता है, कसौटी किया भगवान ने यहाँ अर्जुन का। भगवान ने कहा कि तुम व्यासदेव के पास चले जाते और कहीं चले जाते, मुझे कोई रुचि नहीं है तुम्हारे गुरु बनने में। तो ये सब इसलिए कहा जाता है, जनरली गुरु परीक्षा करता है शिष्य की, गुरु जनरली परीक्षा करता है कि तुम वास्तव में उपदेश चाहते हो या बस मन में आ गया तो पूछ लिया। वास्तव में तुम शिष्य बनना चाहते हो, जनरली कई बार ऐसा देखा जाता है शिष्य गुरु की परीक्षा करते, गुरु शिष्य की परीक्षा करते, भगवान चेक करना चाहते थे कि इसका दृढ़ निश्चय कितना है, वो मेरे पास आना चाहता है कि नहीं। कई बार होता, मेरे लाइफ में भी ऐसा हुआ था, मेरे लाइफ में मुझे ऐसा नहीं कहा था कुछ कि कुछ जवाब नहीं दिया कुछ, तो मुझे तो ऐसा बोल दिया कि तुम्हारी दीक्षा लाइफ में कभी मिलेगी नहीं, तुम्हें दीक्षा की कोई आवश्यकता ही नहीं, डोंट डू, तुम दीक्षा मत लो। तो मैं छोटा था, 12-13 साल की उम्र थी मेरी, इतना घबरा गया, सोचने लगा इतना डिस्क्वालिफाइड हूं मैं, मुझे दीक्षा ही नहीं मिल सकती। तो एक संभव था कि मैं कृष्ण भक्ति में ढीला पड़ जाऊं, ये सब, लेकिन भगवान और गुरु की कृपा से 2 महीने के पश्चात फिर दीक्षा हो गया मेरा। 2 महीना हुआ उसके बाद, और जब बात किया उसके 2 महीने के पश्चात दीक्षा हुआ था मेरा। लेकिन कभी ये तब मैं समझा था, उस चीज को इस समय समझा था मैं कि गुरु मेरा परीक्षा कर रहे थे। एक्चुअली गुरु के सामने परीक्षा देना ये शिष्य का सौभाग्य होना चाहिए, इसलिए कभी भी गुरु अगर आपकी परीक्षा लेते हैं तो उसमें संकोच मत कीजिए, तैयार रहे गुरु के सामने जो भी आप जो भी परीक्षा लेना चाहे। तो यहाँ पर भगवान नहीं बोल करके अर्जुन का परीक्षा ले लिया, लेकिन अर्जुन ने तो बोला भाई मैं तो युद्ध नहीं करने वाला, आप मुझे सिखाओ जो करना है सिखाओ। आगे वाले संजय ने बता दिया आगे क्या किया अर्जुन ने, 9वां श्लोक पढ़िए।
आ प्रमाणे कया पछी शत्रुओं दमन करनार अर्जुन ने कृष्ण ने कहू हे गोविंद हूँ लड़ीश नहीं अने मौन थई गयो।
गोविंद मैं लड़ने नहीं आ रहा, ऐसा करके साइड में रख लिया, तुम सीट में बैठ गया अपनी सीट पर, मैं नहीं लड़ूंगा। क्यों? मैं तुम्हें बता दिया, देखो मेरी समस्या क्या है, मैं तो तुम्हारा शिष्य बनने चाहता हूँ, अब मुझे गाइडेंस दो, एक गुरु की तरह मुझे उपदेश करो, मैं युद्ध वुद्ध नहीं करने वाला, ये मेरा अंतिम निर्णय है। रख दिया साइड में बैठ गया। तो प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं एक्चुअली अर्जुन ने यहाँ पर कृष्ण के लिए ऋषिकेश शब्द का उपयोग हुआ है। तो आप जिस तरह से मेरी इंद्रियों के स्वामी है तो आप मुझे प्रॉपरली गाइड कीजिए शास्त्र के आधार से कि मेरा धर्म क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, तो मुझे सिखाइए। तो प्रभुपाद तात्पर्य में धृतराष्ट्र मस्ट हैव बीन वेरी ग्लैड टू अंडरस्टैंड दैट अर्जुन वाज नॉट गोइंग टू फाइट एंड वाज इंस्टेड लिविंग द बैटलफील्ड फॉर द बेगिंग प्रोफेशन। बट संजय डिसअपॉइंटेड हिम अगेन इन रिलेटिंग दैट अर्जुन वॉज कम्पिटेंट to kill his enemies, Parantapa again. Although Arjun, for the time being, was overwhelmed with false grief because of his family affection, he surrendered unto Krishna, the Supreme Spiritual Master, as a disciple. So, Arjun ladega nahi, baith gaya, to Dhritarashtra prasanna ho jate, khush ho jate. Aur wo kya keh raha tha, wo bheekh mangega, kya baat kar raha? अच्छा छोड़ देगा, युद्ध भूमि छोड़कर चला जाएगा, वाह तब तो हमारी युद्ध कौरव का जीत होने ही वाला है, तब तो हम विजयी होंगे। लेकिन संजय ने बोल दिया क्या, परंतपा, अर्जुन अभी भी उतना शक्तिशाली है जो अपने शत्रुओं को नष्ट कर सकता है, इतनी शक्ति है उसमें अभी भी, इसलिए ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है। संजय ने बोल दिया धृतराष्ट्र को। सो अभी भगवान ने इस तरह से मैं नहीं लड़ूंगा ऐसा बोल करके वो तो बैठ गए भाई। अभी टेंस में पढ़िए क्या लिखा है।
उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मग्न अर्जुन से युधिष्ठिर ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे।
हाँ, प्रहसन्नीव, प्रहसन्नीव का अर्थ होता है कि हंस करके, हंसकर, हंसकर के का, हंसने का अर्थ क्यों है यहाँ पर, भगवान ये सोचकर हंस रहे थे। प्रभुपाद लिखते हैं इसमें कि बिकॉज हिज फ्रेंड हैज बिकम अ डिसाइपल, वो आपका कोई बहुत करीब का मित्र है, बचपन से साथ में खेला है, वो आपके साथ खाता है पीता, इतना पुराना मित्र है, वो कहता है कि मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, तुम मेरे गुरु हो, तो हंसी नहीं आएगी। तो भगवान स्माइल किया, हंस के, है ना, लेकिन अभी गुरु पर ले लिया, अभी गुरु के रूप में। तो जनरली ऐसा देखा जाता है कि प्रभुपाद राइट्स, इट अपीयर्स दैट द टॉक बिटवीन द मास्टर एंड द डिसाइपल्स, डिसाइपल वॉज ओपनली एक्सचेंज इन द प्रेजेंस ऑफ बोथ आर्मीज सो दैट ऑल वेर बेनिफिटेड। प्रभुपाद लिखते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु और शिष्य के बीच का जो संवाद है, अर्थात जो भगवद गीता का जो डिस्कशन है, वो ऐसा कान में कानाफूसी में नहीं हुआ था, क्लियर सबके सुनाई दे। ऐसा जनरली भक्त लोग को ऐसा कुछ हाइड नहीं करते कुछ भी, भगवान ने भी उपदेश पूरा सबको सुना दिया। गुरु और शिष्य के बीच में जब बातचीत होती है तो गंभीर होती है, वो मित्र मित्र का बात होता है उसमें तो आप मजाक कर सकते हो। कृष्ण और अर्जुन अगर मित्र के रूप में होता तो एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से मजाक कर सकता है, उसका बुरा नहीं मानता कोई, लेकिन गुरु और शिष्य के बीच में इस प्रकार का संबंध नहीं होता है। गुरु और शिष्य के बीच का जो संबंध होता है वो गंभीर होता है, जिसमें एक मर्यादा रहती है। गुरु के प्रति वो आपके पिता के समान है और उनको पूरा हक है, वो आपको डांट भी सकते हैं। और प्रभुपाद हमेशा कहते थे गुरु का काम होता है हमारा सुधार करना, तो इसलिए दोनों के बीच में अगर गंभीरता नहीं रहेगी तो गुरु अपना काम नहीं कर सकेगा और शिष्य अपना काम नहीं कर सकेगा, तो इसलिए दोनों के बीच में गंभीर रिलेशन होना चाहिए। सो बढ़िए 11वां श्लोक।
श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित के पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक योग्य नहीं है, जो विद्वान होते हैं या तो जीवित के लिए यही मृत के लिए शोक करते हैं।
हाँ, अब प्रॉपरली गुरु का काम किया, बात तो बड़ी बड़ी करते हो, मूर्ख नंबर एक। अशोचानंद सोचस्तम प्रज्ञावादान से पास, ऐसे बोलते हो जैसे बहुत ज्यादा विद्वान हो, पढ़े लिखे हो, प्रज्ञावादान से पास। लेकिन अर्जुन तुम मूर्ख नंबर एक हो, गता सुन्न गता सोच, नानु सोचन्ति पंडिता। जो बुद्धिशाली लोग होते हैं वो कभी भी मृतक या जीवित व्यक्ति का शोक नहीं करते। डांट दिया भाई, दिस इज द वे ऑफ गुरु। तो आगे वाले श्लोक में भगवान हंस दिए थे कि ये क्या मेरा शिष्य बन रहा है, कृष्ण से लग दी से। और ऐसा भी सोच रहे होंगे भगवान कि अगर समझ लो कि आपका एक प्रीमाइस है, कंपाउंड है, समझ लो आपका फ्लैट है, यहाँ पर ओपन प्लेस है, वहां पर दो कुत्ते आपस में झगड़ रहे, ये पार्किंग मेरा, वो पार्किंग तुम्हारे, इसके अंदर नहीं आने का। दो कुत्ते आपस में झगड़ रहे, भौंक रहे, चिल्ला रहे, सीरियस फाइट कर रहे, तो आपको हंसी नहीं आएगी, बोले क्या लोग ये भौंकते एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि ना उसका पार्किंग है ना इसका पार्किंग है, दोनों का किसी का पार्किंग नहीं है। तो भगवान भी हंस रहे हैं, बोले ये मेरा देश, वो मेरा देश, लड़ रहे, ये हस्तिनापुर मेरा, बोले इंद्रप्रस्थ मेरा है, और कुछ भी तुम्हारा नहीं है, सब मेरा है। एवरीथिंग बिलोंग्स टू मी, लेकिन बीच में आकर के बोलता है मैं इंडियन हूँ, तुम पाकिस्तानी है, लड़ो इसको आपस में मारो। तो कहाँ से हो गया तुम्हारा इंडिया, तुम्हारा कहाँ कब से हो गया? मैंने जन्म लिया है तो तुमने पूर्व जन्म में तो अफ्रीका में जन्म लिया था, जाओ उधर राइट। तो भगवान इस तरह से व्यवस्था, यहाँ पर तो डांटा अर्जुन को कि मूर्ख नंबर एक हो, बातें बड़ी बड़ी करते हो, दिखाते हो कि मैं तो बड़ा विद्वान हूँ, बड़ा विद्वान हूँ, लेकिन आता तो कुछ है नहीं। तो चाणक्य के पंडित कहते हैं पुत्रम च शिष्यम च ताड़ेत न तो लालयेत। पुत्र को और शिष्य को ज्यादा लालन पालन नहीं करना चाहिए पिता और गुरु को। अगर पिता या गुरु ठीक नहीं करते बेटे को, ताड़ेत डांटते नहीं है, तो बेटा ठीक नहीं हो पाता है, वो बिगड़ जाता है और आगे जाके वो उसका ही नुकसान होता है। इसलिए पिता का कर्तव्य होता है कि डांट दे। पहले के समय में ऐसा सिचुएशन था कि आजकल तो पता है, लेकिन पहले के समय में जो संस्कारित लोग होते थे उसमें पिता का विशेष महत्व रहता था। पिता का एक स्पेशल फियर भी रहता था बच्चों में, भले हालांकि वही पिता ही उनको पालन पोषण करते हैं, वही उनका ध्यान रखते हैं, लेकिन पिता पिता है, कैनॉट गो अगेंस्ट, अगेंस्ट में नहीं जा सकते, गुरु के अगेंस्ट में नहीं जा सकते। तो गुरु और पिता उनका काम है कि वो डांटे। भक्तिदास सरस्वती भी डांटते थे कभी कभी, प्रभुपाद भी डांटते थे। भक्तिदास सरस्वती प्रभुपाद एक लेक्चर में बता रहे थे कि माय गुरु महाराज यू विगरसली चेस्टाइज समटाइम, डैम रास्कल, फुलिश, स्टूपिड, ऐसे शब्दों का उपयोग करते थे टू चेस्टाइज, चेस्टाइज करने के लिए। बट ऑफकोर्स दैट इज ओनली अफेक्शन, नथिंग एल्स। पिता डांटता है तो क्या वो शत्रु है? नहीं, वो तो उसका प्यार है और तुम्हारा सुधार चाहते हैं, इसलिए वो डांटते हैं। प्रभुपाद गिव्स एग्जाम्पल दैट प्रभुपाद वॉज डिसाइडिंग लेक्चर, भक्तिदान सरस्वती लेक्चर दे रहे थे और प्रभुपाद उनका लेक्चर सुन रहे थे। तो एक व्यक्ति था जो कि उस मंदिर का डोनर था घोड़ियामा के, तो वो डोनर बहुत कुछ 60 रुपए उस समय के, तो शायद इस समय के 50,000 होगा, था होगा पता नहीं कितना, लेकिन ये हम बात कर रहे कुछ 70-80 साल या 100 साल पहले की, तो उस समय 60 रुपए का तो बहुत वैल्यू है। तो वो दान दे देते हाँ प्रति मास 60 रुपए। तो बीच लेक्चर में खड़े होकर के कुछ बताना चाहते थे, करेक्शन, भक्ति सिद्धांत सरस्वती लेक्चर दे रहे और इनका इतना साहस था कि वो खड़े होकर के कुछ बोलना चाहते थे, कुछ सुधार करना चाहते थे, करेक्ट करना चाहते थे भक्ति सिद्धांत को। भक्ति सिद्धांत सरस्वती इतना गुस्सा हो गए, डू यू थिंक दैट बिकॉज यू पे 60 रुपीज यू हैव परचेज अस, तुम हमें 60 रुपए प्रतिमास देते हो इसका अर्थ है कि तुमने मुझे खरीद लिए? और आगे कहे उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें कहता हूं और किसी को नहीं कहता हूं, तुम लोगों का ध्यान भंग कर रहे हो और अपने आप को बड़ा विद्वान मानते हो। इस तरह से उनको बहुत बुरी तरह से डांटा। तो प्रभुपाद ने कहा कि ये जो चेस्टाइज है वो उचित है, ये गुरु बोल रहे हैं तो तुम शिष्य का या कुछ वरिष्ठ बोल रहे हैं आपके, उसके बीच में आपका बोलना आपका इमैच्योरिटी दिखाता है। कोई आपसे विद्वान है या आपसे कोई वरिष्ठ है या आपके गुरुजन है, अगर वो कुछ बता रहे हैं तो इसके बीच में बोलना ये मूर्खता बताती है आपकी, यू आर फूल। तो इसलिए गुरु अगर डांटते हैं तो वो डांट वास्तव में उनका स्नेह है। तो इसलिए भगवान यहाँ पर अर्जुन को डांट दिया मूर्ख नंबर एक है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि अर्जुन मूर्ख नंबर एक था। अर्जुन को डांटने का कार्य कृष्ण का था, कृष्ण ने उसको डांटा क्योंकि वो बातें ऐसी कर रहा था। सो दैट वॉज कृष्णस वे ऑफ डिले, प्रज्ञावाद से बास से। सो अभी आगे वाले श्लोक में आप आत्मा का ज्ञान भगवान शुरू करते हैं। पढ़िए 12 नंबर।
ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और न ऐसा है कि भविष्य में ये हम लोग नहीं रहेंगे।
कुछ की मेमोरी श्लोकास है, ये श्लोक है मायावाद फिलोसॉफी को तोड़ने वाला। नत्व वा हम जातुनासम नत्व नेमे जनाधिपा, ऐसा कभी नहीं था कि ना मैं था ना तुम थे, और ऐसा भविष्य में भी कभी नहीं होगा कि हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा। भूतकाल में मैं कृष्ण था, वर्तमान में मैं कृष्ण हूं, और भविष्य में भी मैं ही कृष्ण रहूंगा। और तुम अर्जुन भूतकाल में थे, अस्तित्व में अभी भी अस्तित्व में हो, और आगे भी अस्तित्व में रहोगे। अर्थात आत्मा और परमात्मा अर्थात अर्जुन और कृष्ण, इनका मिलन कभी भी संभव नहीं है। भगवान यहाँ पर स्पष्ट कहते हैं कि मैं भविष्य में भी रहूंगा और तुम भी रहोगे। अगर तुम मुझ में विलीन हो जाओगे तो तुम्हारा अस्तित्व चला जाएगा, लेकिन ऐसा तो नहीं कहा भगवान ने, अस्तित्व हमेशा रहेगा। तो हमारी जो व्यक्तिगतता है इंडिविजुअलिटी, दैट विल रिमेन सेम, वो हमेशा रहेगी। ऐसा नहीं कि आज यहाँ पर सब लोग इकट्ठे हैं तो ये सब युद्ध में अलग अलग है, युद्ध लड़ रहे हैं, और जिस दिन इन सबका मृत्यु होगा, युद्ध में हार जाएंगे, तो ये सब मुझ में विलीन हो जाएंगे। इसको एक एग्जांपल देते हैं, यू नो आपने सुना होगा घटाकाश पटाकाश, सुना है घटाकाश पटाकाश? नहीं सुना है? घटाकाश पटाकाश क्या होता है? ये मायावादी सिद्धांत है। इसमें क्या होता है कि एक मटका ले लो, मटके में पानी भर दो, और वो मटका, पानी भरा हुआ जो मटका है उसको रात के समय पे आप बाहर रखो, खुले आकाश में बाहर रखो। अभी आकाश में एक चंद्रमा है और उस घड़े में एक चंद्रमा है पानी के अंदर, राइट, उसमें भी एक चंद्रमा है। अब मटका तोड़ दो, तो मटका तोड़ दोगे तो मटके वाला जो चंद्रमा है वो आकाश वाले चंद्रमा के साथ जाके मिल जाएगा। उसको बोलते हैं घटाकाश पटाकाश, ये थियरी। अभी तुम शरीरधारी हो, मटकाधारी हो, अब मटके में हो, शरीरधारी हो, इसलिए तुम्हारा अस्तित्व अलग है, लेकिन जैसे ही तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाएगा, तुम मर जाओगे, तुम उसमें जाके विलीन हो जाओगे। उसमें तुम्हारा घटाकाश का अस्तित्व नष्ट चला जाएगा, वो घड़े में जो चंद्रमा था उसका अस्तित्व चला गया। अब कहाँ गया? वो तो गया, विलीन हो गया, है ही नहीं अब। ये है मायावादी सिद्धांत, यह गलत सिद्धांत। तो मायावादी लोग क्या सोचते हैं कि हम सब आत्माएं हैं, और हम सब जब मुक्ति की अवस्था प्राप्त करते हैं तो हमारा अस्तित्व नष्ट हो जाता है, हम भगवान में एकाकार हो जाते हैं, हम भगवान में विलीन हो जाते हैं, या ब्रह्म ज्योति में निराकार में विलीन हो जाते हैं। ये बात बताते हैं मायावादी लोग। इससे क्या होता है, भगवान का यह वचन झूठा हो जाता है। भगवान यहाँ पर कहते हैं कि आत्मा का अस्तित्व हमेशा रहता है, मेरा भी अस्तित्व हमेशा रहता है। ऐसा नहीं है कि कृष्ण आज वहां पर है, कृष्ण भी जब मर जाएंगे तो भी विलीन हो जाएंगे। ऐसे कुछ लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं ऐसे, बहुत सारे लोग क्या बोले, कृष्ण नहीं, कृष्ण के अंदर जो आत्मा है वो भगवान है। अब भाई मूर्ख, ये आत्मा और शरीर कृष्ण का एक ही होता है, तुम्हारा जैसा नहीं है कि तुम मरेगा तो तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाएगा। ये भगवान है। अगर मेरे आत्मा शरीर में अंतर है और भगवान में भी वैसा अंतर होगा तो फिर मैं भी भगवान वो भी भगवान, तो फिर भगवत गीता का कोई वैल्यू ही नहीं रहा। एक भगवान है और एक भक्त है, एक आत्मा है और एक भगवान है, इन दोनों के बीच में कोई बात होती है तो कोई समझने की बात है। अगर दो आत्मा ही आपस में बातें कर रहे हैं तो कोई तो हम लोग भी बातें कर रहे हैं, तो फिर वो भगवत गीता कैसे बन गई? उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। अगर दो एक समान साधारण लोग आपस में बात करते तो उसको भगवत गीता नहीं कहा जाता है, उसका कोई महत्व ही नहीं रहता। भगवान हमारी तरह नष्ट नहीं होते। ऐसा नहीं था कि भगवान पहले निराकार थे फिर साकार हुए बाद में फिर से निराकार हो जाएंगे। हम भी पहले निराकार थे, अब ये शरीर प्राप्त हुआ फिर वापिस साकार हुए निराकार हो जाएंगे। ये लोग इस प्रकार का दावा करते हैं। वो कहते हैं कि जब भगवान निराकार थे अब शरीर लिया तो माया में पड़ गया कृष्णा, गोपियों के साथ लीला करने लगा, मक्खन चोरी करने लगा, तो वो माया में पड़ गया। जब उसकी मुक्ति होगी और जब ये शरीर छोड़ेगा कृष्णा तब जाके वो भगवान बनेगा। तो ये है मायावादी सिद्धांत। तो आपके लिए एक चीज ये रहेगा, आपके वर्कशीट में भी शायद होगा, इस तात्पर्य में प्रभुपाद मायावादी सिद्धांत को तोड़ रहे हैं। तो कितनी ऐसी बातें, दो या तीन बातें ऐसी है, अलग अलग सिद्धांत, अलग अलग सोच मायावादियों की, वो सारी सोच को प्रभुपाद तोड़ रहे हैं। वो आप अपने हिसाब से पॉइंट बना करके लिख लेना कि प्रभुपाद कौन सा कहते। देखो प्रभुपाद एक लास्ट आर्ग्यूमेंट देते हैं, उस एक पढ़ते हैं हम आपके सामने। मायावादी में आर्ग्यू दैट द प्लूरालिटी मेंशन इन दिस वर्स इज कन्वेंशनल एंड दैट इट रिफर्स टू द बॉडी बट प्रीवियस टू दिस वर्स सच अ बॉडी कंसेप्शन इज ऑलरेडी कंडेम्ड। आफ्टर कंडेमिंग द bodily conception of the living entities, how was it possible for Krishna to place a conventional proposition on the body again? अगर कोई प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है, अगर कोई ऐसा सोचता है कि भगवान शरीर की बात कर रहे हैं तो भगवान मूर्ख नहीं है। शरीर का तो बात ऑलरेडी बहुत पिछले श्लोक में बोल दिया कि जिंदा और मृतक व्यक्ति का शोक नहीं करते, पहले तो बोल दिया, बॉडी कंसेप्ट को तोड़ दिया। अब थोड़ी पागल है भगवान क्यों फिर से तुम्हें बॉडी की बात करेंगे। अर्थात यहाँ पर स्पष्ट रूप से कृष्ण आत्मा की बात कर रहे हैं, शरीर की बात नहीं कर रहे। अर्जुन का जो आत्मा है वो हमेशा रहेगा, भूतकाल में भी था। तो जी आई वुड सजेस्ट कि आप इसको थोड़ा ठीक से पढ़िए, पढ़ करके इसमें से मायावादी सिद्धांत को समझ करके, यू कैन आस्क इफ यू कैंट अंडरस्टैंड, अगर आप नहीं समझ पाए तो पूछिए, लेकिन इसमें मायावादी सिद्धांत को पॉइंट बना करके लिखिए। ओके पढ़िए 13 नंबर।
जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, इसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है, भी व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से भोग को प्राप्त नहीं होता।
यस दे इनो अस्मिन यथा। जैसे किसी देहधारी को देहिन का अर्थ होता है शरीरधारी, देहिन अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, जैसे शरीर में बाल्यावस्था से किशोरावस्था, किशोरावस्था से युवावस्था, युवावस्था से वृद्धावस्था और फिर वापिस देहांतर दूसरा शरीर, तो ये साइकिल चलता रहता है। तथा देहांतर यथा तथा, जैसे पहले का है तथा देहांतर, बिल्कुल उसी तरह से। यथा तथा का अर्थ होता है बिल्कुल सेम तथा देहांतर प्राप्ति, उसके बाद देहांतर होता है। इससे धीर पुरुष बिविल्डर नहीं होते, धीरस्तत्र नम होते, इससे वो मुझाते नहीं, धीर पुरुष जो बिविल्डर नहीं होते। तो अर्जुन अगर ये जब कह रहे थे कि मैं भीष्म द्रोण इन सबको नहीं मारूंगा, तो भगवान ने यहाँ पर स्पष्ट बता दिया, देखो अर्जुन ना भीष्मक की आत्मा को तुम मार सकते हो क्योंकि वो मरता नहीं, द्रोण की आत्मा को भी नहीं मार सकते, और ये लोग शरीर अलग अलग अवस्था से गुजर करके अब ये मरेंगे, उसके बाद उनको नया शरीर प्राप्त होगा। अर्जुन को ये बताया जा रहा है, भीष्म ने आगे के सारे स्टेप्स पूरे कर लिए हैं, राइट, भीष्म ने पूरे कर लिए, द्रोण ने भी पूरे कर लिया, तो इनका बस अब मरेगा तो दूसरा शरीर मिलेगा, बस इतना ही बचा है, ज्यादा कुछ बचा नहीं, इसलिए तुम्हें इसको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, ये शरीर का बदलाव जो इससे कोई दुखी नहीं होता है। कोई बच्चा बड़ा होता है तो लोग खुश होते ना, अरे वाह ग्रोन अप, बड़े हो गए तुम तो, है ना, ऐसा बोलते, लेकिन उससे उसे कोई शोक करता है? आपने देखा कभी कोई शोक सभा का आयोजन किया गया है? क्यों भाई, क्यों शोक सभा का आयोजन किया है, मेरा बच्चा बड़ा हो गया, वो ऐसा कभी नहीं। अच्छा बर्थडे मनाते हैं ना, कभी ऐसा देखा है कि कॉलेज में या स्कूल में बच्चे रोते रोते आते हो, दिन में उठता है और अचानक से सुबह सुबह उठ करके चिल्लाता है, रोने लगता है, हाय हाय मुझे मूंछ का बाल आ गया, देखा कभी ऐसा, कभी देखा ऐसा कि वो रोने लगता है? नहीं, शोक करता है क्या, रोता है नहीं। तो इस तरह से जब बच्चा जवान होता है तब शोक नहीं होता है, जवान बूढ़ा होता है तो भी कोई रोता नहीं है कि यार हाय हाय अब मैं बूढ़ा हो गया, कोई रोता, मैं तो नहीं देखा कोई रोता हो, लेकिन बूढ़ा होने के पश्चात दूसरा शरीर मिलता है तो क्या पाप है बाप, कुत्ता मर जाता है तो भी शोक सभा लगा देते हैं। सोचो आप, अगर कोई व्यक्ति मृत्यु प्राप्त करता है तो इतना दुखी होने की क्या आवश्यकता है, क्यों इतना दुखी हो रहे हो, दूसरा शरीर उसको मिलने वाला है, शरीर का तो क्रम है, वो तो बदलेगा ही, आज नहीं तो कल, हो तो मरने के लिए तो जन्म लिया है। तो धीरस्तत्र नमो यति, एक बार ऐसा हुआ था कि ये महाराज ययाति है ना, एक महाराज ययाति नाम के राजा थे, वो बड़े इंद्रिय भोग के लोलुप थे, तो उनका वृद्धावस्था उनको प्राप्त हो गया, वो बूढ़े हो गए, इतना सांसारिक सुख भुगतने का बहुत प्रयास किया और भोगा भी उन्होंने, लेकिन उनका मन भरा नहीं था और संतुष्ट नहीं हुए थे, और लेकिन बूढ़े हो गए थे, तो उन्होंने अपने बच्चे से जवानी एक्सचेंज कर ली, अपना बुढ़ापा बच्चे को दे दिया और उनके बच्चे की जवानी खुद ले ली और फिर भोग करना शुरू कर दिया। तो ये टेम्पररी होता है, ये टेम्पररी होता है, इसलिए केवल एक प्रश्न कोई पूछ सकता है कि ठीक है चलो मृत्यु से हमें दुख नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनके शरीर नष्ट हो जाएंगे जिनसे हम कनेक्टेड है, इसका दुख है, जिनसे हम संबंधित हैं इनके शरीर नष्ट हो जाएंगे इसलिए दुखी है, लेकिन जिसका वृद्धावस्था आएगा उसको फिर से युवावस्था नहीं आएगा, जो वृद्ध बना है उसको फिर युवावस्था नहीं मिलने वाली, अब बचपना नहीं मिलेगा उसको, अब नेक्स्ट स्टेज क्या है उसका, तथा देहांतर प्राप्त, नेक्स्ट स्टेज ये है कि आपको दूसरा शरीर ग्रहण करना पड़ेगा, तो इसमें कोई दुख की बात नहीं है अर्जुन, खाली तुम चिंता कर रहे हो, इसमें कोई दुख की बात नहीं है। हाँ ये स्वाभाविक है कि आपको शोक होता है कि आपका कोई करीब का रिश्तेदार चला जाए तो आपको शोक होता है, लेकिन शास्त्र चक्षु जो होते हैं, जो शास्त्र को समझने वाले लोग होते हैं, वो राधर ये सोचते हैं कि इसको नया शरीर प्राप्त होगा, अभी भीष्म का शरीर तो पुराना हो गया है तो उसको नया शरीर प्राप्त होगा तो ज्यादा खुशी होगा ना वो, तो बूढ़े शरीर में ना ठीक से देख सकते हैं, ना ठीक से चल सकते हैं, ना खा पाते हैं, ना सुन पाते हैं, बहुत सारी समस्या होती है ना वृद्धावस्था में। लेकिन नया शरीर मिलेगा तो सब कुछ फ्रेश ना, आगे भगवान बताते इस चीज को लेकर के। तो इसलिए हमें इस प्रकार का चिंता करके दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं। तथा देहांतर प्राप्ति, और भगवान के जो भक्त होते हैं वो तो बिल्कुल चिंता नहीं करते मृत्यु की। क्यों? क्योंकि एक बार एक व्यक्ति प्रभुपाद को प्रश्न पूछे कि हम भी मरता है तुम भी मरता है तो दोनों में अंतर क्या है? भक्त लोग भी मरते हैं और नॉर्मल लोग भी मरते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा एग्जाम्पल के रूप में कि बिल्ली जो होती है वो चूहे को भी मुंह में रखती है और अपने बच्चे को भी मुंह में रखती है, दोनों में क्या अंतर है? क्या अंतर है? चूहे के लिए साक्षात मृत्यु है, और बिल्ली अपने बच्चों को जब मुंह में लेती है तो उससे सुरक्षित स्थान, उससे ज्यादा सुरक्षित स्थान और कोई नहीं है, राइट? तो वो दिखता तो एक ही है सामने वाले को, बिल्ली ने मुंह में रखा। तो साधारण लोगों को ऐसा दिखता है कि ये भगवान का भक्त भी मर गया और वो भी मर गया, साधारण व्यक्ति। लेकिन साधारण व्यक्ति मरता है तो उसको भगवान के धाम में गति नहीं मिलती, लेकिन भगवान का भक्त जब शरीर त्याग करता है तो उसको मरना नहीं बोलते। भगवान का भक्त जब शरीर त्याग करता है तो भगवान उसको गति करते हैं। गति का अर्थ होता है भगवान के धाम में, है ना? तो भगवान उसको ले जाते हैं। इसलिए ये नहीं सोचना कि हमारा मृत्यु और साधारण मृत्यु, भक्तों का मृत्यु और साधारण व्यक्ति का मृत्यु जो है वो समान है। मृत्यु किसी को पसंद नहीं है, मृत्यु कोई नहीं चाहता। कोई भी व्यक्ति आकर आपको कहता है कि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारी हत्या करने वाला हूँ, तो तुरंत हम चिल्ला चिल्ली शुरू कर देते, रोना शुरू कर देते हैं, हाय हाय बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, ये मार देगा मुझे, ये मार देगा मुझे। क्यों? क्योंकि मरना किसी को पसंद नहीं है। तो क्या मारे हो कभी पहले? कैसे पता आपको कि मरने में दुख होता है? मरे तो है नहीं कभी, तो कैसे पता कि मरना पसंद नहीं है? वो इसलिए पता हुआ क्योंकि हम पूर्व जन्म में कई बार मर चुके हैं और माता की गोद में 9 महीना बहुत कष्ट झेला है, इसलिए मरने का नाम सुनते ही हमारी चेतना हिल जाती है। और दूसरा एक समस्या है कि हम ये शरीर में इतने सालों से व्यस्त है, बद्ध है इतने सालों से, तो अब हम ये भूल गए हैं कि शरीर मेरा नहीं है, ये हम भूल गए हैं। ये शरीर टेम्पररी, ये भूल गए हम। अभी हम एक ऐसा ही मानते है, यू नो, मैं कौन हूँ? तो हमारी इमेजिनेशन में हम कैसे दिखते हैं? जैसे अपना फोटो होता है हमारा, है ना, एकदम वैसे। लेकिन वास्तविक वो हमारा है ही नहीं, वास्तविकता वो है ही नहीं। तो मृत्यु किसी को पसंद नहीं है, therefore we generally get disturbed when we listen, मृत्यु आएगी। सो तो हम छोटा सा एक्सरसाइज करें आपके साथ, अभी तक के जो श्लोक हुए उसके आधार से, ठीक है? सो वी हैव एक्सरसाइज। ठंडा बंद कर दो, ठीक है? Okay, so now